پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جس کا نام ہے حب الوطنی، آپ امید ہے کہ 14 اگست 2016 سن عیسوی کو اپنے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو یوم آزادی ہے 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہم ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں یہ ملک عطا ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے حصول کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، جان کی، مال کی، وغیرہ وغیرہ، تب جا کر یہ ایک آزاد مملکت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 1947 سے اگر ہم لے کر اب تک چلیں تو چند جنریشن گزر چکی ہیں، کچھ ہیں کچھ کسی عمر میں، کچھ کس عمر میں، کچھ کا بہت آگے کی عمرے میں ہیں، جن جو شاید 1947 کے وقت پیدا ہوئے ہوں گے، جو اس وقت ان کی عمریں 2-5 سال کی ہوں گی، یا ان کی عمریں 10-15-20 سال کی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ بھی باقاعد حیات بھی ہوں۔ اب اس میں ہے یہ کہ کوئی تو بہت خوش ہے اور کوئی مطمئن ہے، اور کوئی مطمئن نہیں ہے، خوش بھی نہیں ہے، شکوہ شکایتیں اس کی جاری ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے سلسلے میں، فیس ٹو فیس ہے، ایک طرف ہمارے کچھ بزرگ اور بڑی عمر کے اسلامی بھائی موجود ہیں، ایک طرف ہمارے کچھ جوان اور نوجوان اسلامی بھائی موجود ہیں، اور ساتھ ہم بھی حاضر ہیں۔ تو مکس انداز ہے، دیکھتے ہیں کہ اب اگر شکایتیں تو کیوں ہیں، وہ خوش ہیں تو کیوں ہیں، اور اب آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی لے تو نہیں سکوں گا کیونکہ آپ یہ ریکارڈڈ سلسلہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ انشاءاللہ لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ مقصد ہمارا حب الوطنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ بیان بھی امید ہے کہ آپ سنیں گے۔ اب یہ کہ موضوع وغیرہ میں نے وضاحت کر دیے، اب آپ درود پاک بھی پڑھ لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھا، اب نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجئے، کہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے، سلسلہ دیکھنے کی نیت کریں۔ الحمدللہ چونکہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، تو اس میں جو بھی بات چیت ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ ایک اس کا جو مقصد ہے، مقصد دینی ہوگا اور ہوتا بھی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ایسے مدنی پھول بھی ملیں گے جس سے اللہ نے چاہا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بڑھے گی اور وطن کی محبت بھی بڑھنے کے امکانات ہوں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلیمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت بھی دوں گا، برائی سے منع بھی کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ بلند کروں گا، اور الدین نصیحہ جو حدیث پاک ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے، انشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ तो चलते हैं, राय लेते हैं हमारे इस्लामी भाइयों की कि कौन अपने मुल्क के बारे में किस तरह के ख्याल जज्बा रखता है। बुनियादी तौर पर तो जाहिर है कि एक पाकिस्तानी को अपने वतन के साथ एक लगाव होना एक फितरी तकाजा समझ में तो आता ही है, लेकिन अब शिकवा शिकायत की भी कुछ बातों का असबाब होते भी हैं, नहीं भी होते, तो अब देखते हैं ये निकालते क्या है। तफसील तो मैंने इसे ली नहीं है, बैठे थे ये बदरात थोड़ा मैं पाकिस्तान हूं दूसरे से ना देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा आप क्या कहते हैं, आपको माशाल्लाह आपकी उम्र बताइए पहले आप तीनों, और आप अपनी राय का चंद मिनटों में पहले इजहार कर दें, फिर तफसील की तरफ जाएंगे।
26 साल उम्र है मेरी।
हाँ फिर इनकी तरफ आता हूँ, ठीक है। तो सीधे हाथ से मैं शुरू करना चाह रहा था, अब देखे प्लस निकलता है कि माइनस निकलता है, क्या क्या निकलता है। डबल बारह। नाम आपका?
मोहम्मद सोहेब अत्तारी।
मोहम्मद सोहेब अत्तारी, अच्छा। आप मैंने कुछ खुलासा तो अर्थ कर दिया सिलसिले का, आपसे इससे पहले कोई इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकी थी। अब ये इरशाद फरमाइए कि आप क्या बहुत खुश हैं, नॉर्मल हैं, या आपको कुछ शिकवा शिकायत है, नाराजगी भी है?
कुछ चीजों में नाराजगी भी है, जैसे यंग जनरेशन
कुछ के वाले। अभी डिटेल में बाद में चलते हैं।
नाराजगी है वैसे देखा जाए,
गालिब नाराजगी है।
गालिब नाराजगी।
अच्छा नाराज। अच्छा सलमान भाई आप?
अच्छा उम्र मेरी 26 साल है, सलमान मेमन नाम है मेरा,
ठीक है।
अर्ज ये है कि इमरान भाई नाराजगी नाराजगी है,
नाराजगी नाराजगी
बिल्कुल नाराजगी है, कि वजह ये है कि मतलब
अभी
फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है ना, मतलब
अभी निकालने का दिल हो रहा है,
बिल्कुल निकालने का दिल हो रहा है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर के जो बुनियादी मतलब राइट्स है ना, ये जो फरमा रहे थे हमारे,
तो कुछ भी नहीं फरमाया,
इन्होंने पहले फरमाया था
सिलसिले से पहले
वो फरमा रहे थे, हम लोग बहुत खुश हैं अभी, मतलब जाने की उम्र, मतलब आप खुद सोचें एक उन्होंने उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया, तो इनको खुश रहना ही रहना है, मजबूरी
है। ठीक है यहाँ तक रुकते हैं, अभी निकाल आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा।
मेरा नाम अम्मार और उम्र मेरी जो एज है 28 साल, और आप मुझसे अगर पूछेंगे तो जो इन दोनों की राह है
इससे
ज्यादा एक्सट्रीम लेवल मेरी राह है।
अच्छा चलें ठीक है, अब रुकते आते हैं आपके पास।
जी जी।
माजिद अत्तारी, अब्दुल माजिद,
सैयद माजिद अली।
अच्छा बापू भी हैं माशाल्लाह।
सैयद माजिद नाम है मेरा, मेरी उम्र है 64 साल।
64 साल।
हमें बड़ी कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान।
आप खुश हैं या नाराज?
बहुत खुश हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं होता हम आजादी से नहीं रह सकते।
अच्छा आप खुश हैं?
बिल्कुल
आप खुश हैं, ठीक है रुकते हैं, रुकते हैं चलते हैं, अभी तो इतनी जल्दी भी की आज की रात है। आप क्या फरमाते हैं?
मोहम्मद याफूर रजा तारी।
याफूर रजा तारी,
हम तो बहुत खुश
हैं। मोहम्मद शफी अत्तारी।
मोहम्मद शफी
जी। उम्र मेरी 55 साल, 55।
55 साल है। आपको आपके मुल्क के बारे में क्या कहना है?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क से बहुत खुश हूँ।
बहुत खुश हैं। तो अब ये के नतीजा ये निकला है कि दो दाया बाजू है, ये नाराज नाराज सा है, जो बाया बाजू है ये खुश खुश है, और अब ये नाराज क्यों हैं ये, और आप खुश क्यों हैं, इसकी वजूहात की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे नाजरीन में भी हो सकता है कि यही दो तबकात पाए जाते हों, बीच में को दो चार और तबके होते होंगे, तो आपको क्या शिकायत है आपके मुल्क से?
सबसे पहले तो ये कि हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि जॉब्स के हवाले से या और किसी तरह की ऐसी काम के हवाले से या हमको आगे बढ़ने दिया जाए, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है जिसको हम अवेल कर सके और इसको लेके हम आगे बढ़ सकें। प्लस हम लोगों
मसला नहीं, मतलब इस एग्जांपल के साथ चलें, दूसरा ये कि कंपेरेटिवली बात करनी पड़ेगी कि भाई किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, हमारे पास ये है या ये नहीं है,
मतलब दूसरे ममालिक में जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में दिया जाता है, यूरोप वगैरह में, कि हम जैसे ही अच्छी एज पे आते हैं हमको हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मतलब किसी भी चीज़ में करप्शन नहीं है और चीज़ साफ सुथरी है, और आपको मौका मिलेगा कि जिसमें आप अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, और हमारे यहाँ पे इस तरीके से कुछ है नहीं मामलात के, अगर चाहे तो भी बंदा सही
नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है?
और प्रॉब्लम इस तरीके से कि जॉब्स अवेल करने के लिए मतलब आसानी नहीं है और सोर्सेस चाहिए होती हैं, कई जगह पे रिश्वत के मामलात होते हैं, मतलब इंसान अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी
महारत पर
हासिल नहीं कर सकता,
सहूलियात हासिल नहीं कर सकता। आपके कहने का मकसद है कि आप जिस चीज को समझते हैं कि मेरा राइट है या राइट होना चाहिए, वो लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे काफी रॉन्ग वे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप सलमान भाई।
इमरान भाई, सबसे पहले तो मतलब जो बुनियादी जो मेरा मसला है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स, मतलब पाकिस्तान जिस नाम से बना था, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान आजाद हुआ था, आप मुझे साबित कर दें कि मतलब इस्लामी जो हकूक हैं, आम जो पाकिस्तानी के इस्लामी हकूक हैं, वो पाकिस्तानियों को मिलते हैं या नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मतलब इन्होंने जो है ना मतलब बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हम अगर हमारी सोर्स नहीं है तो हम किसी जगह जो है ना मतलब आगे नहीं जा सकते। दूसरे कई कंट्रीज ऐसे हैं कि आपने भी सुना होगा, आप माशाल्लाह इतना सफर करते हैं, कि उनका जब बच्चा पैदा होता है तो मुल्क के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी तालीम तरबियत के इसके ऊपर अखराजात एफोर्ड करे। आज हमारे यहाँ पर बच्चे गंदे पानी से मर रहे हैं। आज जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी क्या कहूँ कि जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ, वहाँ तकरीबन 24 घंटे में से जो है ना 18 घंटे लाइट नहीं होती है। ठीक है, दूसरे मतलब जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे हमसे आगे निकल गए। करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बाद आज़ाद हुए थे हमसे आगे निकल गए। ठीक है, तो इस मुल्क में मतलब किसी को तो मतलब 100 मोटो लेना पड़ेगा ना।
आप
ये तो खैर बहुत बात की बात है, मैं तो वो शुरुआत से लूंगा। आपने ये मुल्क आजाद करा के कौन सा तीर मार लिया और क्या मतलब किला फतह कर लिया, ये समझ में नहीं आता। और मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी इस मुल्क में आपको जो मिल गई हैं, जिसके लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी,
वो धले हुए जवाब तो मैं अब तीनों को दे सकता हूँ। क्या मैं अब तीनों से एग्री नहीं करता। जुजवी तौर पर कुछ चीजों से इत्तेफाक अगरचे है, कुलियतन नहीं करता। इंशाल्लाह बस वक्त पर जवाब अर्ज करूंगा, फिर आप डिबेट कर सकते हैं। आप क्यों इतना खुश हैं?
अब इनसे पूछो इस्लामी भाइयों से, पाकिस्तान नहीं हो तो ये कहां से होते? ये पाकिस्तान नहीं हो तो ये कहां से होते?
ये कहते हम जहां होते वहीं से होते।
ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद लिया है, हासिल किया है, और हमारा पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हम आजादी से इबादत कर सकते हैं, आजादी से हम घूम फिर सकते हैं, बड़े बड़े वलीउल्लाह हमारे पाकिस्तान में। हमने पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी के बाद लिया है ना, हमें पता है कि किस तरह हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी कुर्बानी दे हमें पाकिस्तान।
कैसा था जब आप अपना वक्त याद करते हो पाकिस्तान का, कैसा अंदाज आज
तो
कैसा है?
असल बात यह है कि मैं तो मेरी पैदा,
आपको क्या बेहतरी नजर आई
मेरे
इतने सालों में?
इतने सालों में माशाल्लाह हम इस यानी कि हम इबादत कर सकते हैं, हमारी मस्जिदें बाकायदा पाकिस्तान के अंदर, हमारे हर चीज है, कल्चर है पाकिस्तान, तमाम इस्लामी इदारे हैं, तमाम सबसे बेहतरीन तो हमारा।
40-50 साल पहले वो क्या चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में अच्छाई आई है, बेहतरी आई है और पहले नहीं थी? आप क्या कहते हैं?
जो हमने अपनी पैदाइश के बाद तारीख पढ़ी, जो वहां पे मुश्किलात थी हमारे बड़ों को, वो उसकी तरफ देखा जाए तो आज की तरफ देखा जाए तो आज हम इसलिए खुश हैं कि आज हम आजादी से इस मुल्क में हर काम कर सकते हैं। दीनी हमें कोई पाबंदी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें इतना प्यारा मिला कि इसको बड़ी आजादी बड़ी खुशदिली के साथ फैला सकते हैं। कैद तो कैद ही होता है, और रमजान के महीने की बरकत से क्या जम आजाद।
आपको क्या खुशी और फर्ज है?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस मुल्क से, इस पाकिस्तान से। अभी ये जो बातें कर रहे हैं ना सारी बातें, असल में इन्होंने गुलामी देखी नहीं है।
देखिए किसी भी चीज को कंपेयर किया जाएगा ना, कंपेरेटिवली बात की जाएगी। आपकी गुफ्तगू से तो जो अमर भाई मेरा ख्याल है जो कुर्बानी देने वाले थे इनके तो सीने फट गए होंगे कि ऐसी कुर्बानी देने की जरूरत क्या कहती थी। यानी ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक बाप ने बड़ी कुर्बानी देकर एक अच्छा सा बिजनेस स्टेबल करने की कोशिश की, और उसने जब अपनी औलाद के पास वो बिजनेस दिया और वो बिजनेस से उसको नुकसान हुआ या बिजनेस उसका घर नहीं चला सका, तो वो आगे जाकर ये कहे कि मेरे बाप को ऐसा कारोबार कायम करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो इससे वालिद को तकलीफ ही होनी है, राहत नहीं होनी है, क्योंकि जिन्होंने इस वतन अजीज की आजादी में अपना हिस्सा लिया वो तो कब के दुनिया से चले गए, एक तादाद चली गई, ठीक है ना। उनका ना इस करप्शन से कोई ताल्लुक, ना उनका इस बदउनवानी से कोई ताल्लुक, ना उसकी इस तमाम तर जो आप कमजोर है ना उनका उससे कोई ताल्लुक, ना उन्होंने ये कभी सोचा होगा कि ऐसी भी कोई चीजें हमारे यहाँ नौजवानों को फेस करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली जब उन्होंने जो चीज की, तो ये कहना कि आजाद कराने की जरूरत क्या है, आजाद करके क्या ले लिया, तो ये तो उनका सवाल है ना, ये आपका सवाल नहीं है, ये तो उनका सवाल है कि जिन्होंने वतन अजीज को आजाद करवाया, कुर्बानियां दी। अब वो आपसे मुझसे सवाल करेंगे कि हमने जो इतनी कुर्बानियां दी, घर बार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो एक आजाद मुमलिकत जो तुम्हारे हवाले की, तुमने इसके साथ क्या किया, ठीक है ना। क्योंकि वो जो तबका था 1947 में, जिन्होंने अगर ये तहरीक पाकिस्तान में अगर जिन्होंने हिस्सा लिया होगा, तो उनकी उम्र 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की भी, मतलब एक मैच्योर्ड थोड़ी सी पक्की एज ले तो 20 साल की ले लें, तो उनकी पैदाइश हुई होगी 1927 में, यही देख 1927-1930 में इनकी पैदाइश हुई होगी, और आज देखा जाए तो आज कितने साल हो गए होंगे। तो मुश्किल है कि वो तबका
जिंदा
उनमें से चीदा चीदा होंगे ऐसे लोग जो होंगे, और हर कोई तहरीक आजादी का मेंबर बना हुआ हो ये भी जरूरी नहीं होता। जो लाखों लाख लोग माइग्रेट करके हिजरत करके आए, सारे के सारे तहरीक आजादी के अंदर शामिल तो नहीं थे, लेकिन एक सपोर्ट तक, मॉरली सपोर्ट तक चीज थी कि चलो एक आजाद हो जाएगा तो हम एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी थी इनके आगे कुछ तो होगा ना। तो बहुत जो मेन चीज है, जो आपने तो तीन चार चीजें कही ना, जैसे एक रिलीजियस, तो डेफिनेट कि एक मजहबी आजादी एक जहत से देखा जाए, क्योंकि हम चैनल पर हैं, हर बात हम बहुत ज्यादा खुलकर बयान भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस जगह बुनियादी तौर पर देखा जाए, मैं भी दुनिया, जैसा आपने कहा कि दुनिया के तुम कई मुल्कों में, तुम्हारा जाना तो बिल्कुल जाना होता है, लेकिन जैसी मजहबी आजादी पाकिस्तान के अंदर देखी जाती है, ऐसी मजहबी आजादी दुनिया के कई मुल्कों में उसका नामो निशान भी नहीं है। आपने तीन चीजें कही थी, कौन सी कही थी, एक कही थी
रिलीजियस की थी,
ठीक है, यानी रिलीजियस पर अमल, जो रिलीजियस पर अमल नहीं करते वो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर मुसलमान है जो रिलीजियस पर अमल नहीं करते कर सकते हैं, मगर यहां जो रिलीजियस पर अमल करना चाहते हैं, मजहब पर अमल करना चाहते हैं, मजहब पर चलना चाहते हैं, इनको चलने में, बोलने में, अपने नजरियात को अदा करने में इनको किसी किस्म की कोई बजाय रुकावट नहीं है,
ना थी,
थी है ना, थी
ना, पहले ना,
ना
पहले
थी, 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 आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी,
ना पहले थी, अगर पहले अगर ऐसा हुआ
ऐसा था,
देखें पहले भी आप मुसलमानों की तारीख है, आप उठा के पढ़िए, क्या आपके साथ कब ऐसा हुआ है कि आपको आपकी मजहबी रसूमात से रोका गया हो, चलती जा रही थी।
अर्ज करता हूं अमर भाई, मसला ये कि इसके लिए थोड़ा सा दुनिया का सर्वे अब भी करना पड़ेगा। आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे मुमालिक में रह रही है जहां पर गैर मुस्लिमों की भी अक्सरियत मौजूद है, वहां पर जिस कदर तेजी के साथ इस्लामी अकदार, अकाइद, नजरियात, अखलाकियात जितनी तेजी के साथ तबाह हो रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम ना ले रहे हैं ना ले सकते हैं, ठीक है, और होते ही चले जा रहे हैं, उस तनासुब से यहां नहीं है। आप मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, आप एक लम्हे के लिए गौर करें कि टीवी नहीं है दुनिया में, एक तसव्वुर करें, टीवी नहीं है दुनिया में, घर में कोई टीवी नहीं है, अब कौन सा कल्चर आ रहा है आपके घर के अंदर? हम आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन किसी भी और जरिए से वो मजहबी कल्चर जिसे हमने हमारी कौमों को बचाना था, वो मजहबी कल्चर या वो नेशनल कल्चर, वो किसी न किसी जरिए से हमारे घर में आया जिसे हमने इस कौम को बचाना था, तो ये वो कुर्बानी देने वाले, वतन अजीज को आजाद करवाने वाले नहीं लाए थे, ये बात के लोग लेकर आए ना, हम जैसे लोग लेकर आए या वो नस्लें लेकर आई, क्या चलो ये लाओ फिर ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, जिसको देखकर फिर आज हमारे घरों के बच्चे वो कुछ जुमले कह रहे हैं कि जो जुमले इस्लाम और मुसलमानों में राइज नहीं है, ना इसकी बाज़ औक़ात इजाजतें मिलती हैं। तो मजहबी आजादी का तो तसव्वुर, ये तो कोई आम आदमी भी आप इसको पकड़ेंगे ना, जिसको बाज लाख अपने वतन अजीज से शिकायत हो, वो भी ये कहेगा कि यार मतलब कि आजादी है, अजान की आजादी है, नमाज की आजादी है, मिलाद की आजादी है, कुर्बानी के आप जो आपके जो मजहबी त्यौहार हैं इसकी आपको आजादी है, आप मस्जिदें बड़ी रातों में इनकी सजावट करें इनकी आजादी है, मस्जिद बनाएं इसकी आजादी, आप घर में नजर नियाज करें, फातिहा दुरूद करें इसकी आजादी है, तीजा चेलम चालीसवां बरसी वगैरह मनाएं इसकी आजादी है, आप मदरसतुल आप मदरसे खोलें इसकी आजादी है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज पाकिस्तान में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हाफिज दुनिया में, मजहबी आजादी ना होती तो सबसे ज्यादा हाफिज पाकिस्तान में कैसे पाए जाते, ठीक है, सबसे ज्यादा हाफिज दुनिया में पाकिस्तान में पाए जाते हैं, यहाँ पर आलिम बनाए तो इसकी आजादी है, यानी कि ये तो कहा ही ना जा सकता। फिर यहां पर एक यूं समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का, तो इसमें आपको इस्लाम और दीन के इतने पहलू और वो नजर आएंगे, तो जो लिखने वालों ने लिखा तो सही ना, देखिए मैं आपको अर्ज कर, आप आएंगे कि अमल का है,
अमल का है,
ठीक है, अमल का है, कुरान करीम में क्या नहीं है, अमल का है, दोनों बातें देखिए, एक है कि एक चीज को बयान ही नहीं किया गया, दूसरा है कि बयान किया गया है अमल नहीं किया गया, हम दोनों को अलग अलग करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप पॉजिटिविटी की तरफ उम्मीद है के जाएंगे, और जहां पर नेगेटिविटी की बात की, जैसे इन्होंने करप्शन की बात की, बदनवानी की बात, इन्हें राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो आपने बात की, ये जो बात की, तो मैं नहीं कहता कि यहां पर ह्यूमन राइट्स का खून नहीं होता, डेफिनेटली मैं मतलब कि काले को काला नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे इसकी आंखों का इलाज करा दो,
लेकिन एक छोटी सी बात ना इमरान भाई, आप माशाल्लाह मजहबी आजादी और ये फला फला माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का हक मजहबी है, मतलब उसको दुनिया में कोई काम नहीं करने, बाकी काम उसको सिर्फ मजहबी आजादी है, मिसाल के तौर पर किसी जगह पर किसी को मजहबी आजादी है तो उसको तमाम उसके राइट्स मिल गए,
मिल गए, इसलिए मिल गए, मजहब में तमाम तर राइट्स को बयान किया गया है,
इमरान भाई पीने का पानी नहीं है,
तो सुन तो ले, मजहब में अगर कहीं मजहब इंप्लीमेंट है ना, इस्लाम दीन, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, यहां मजहब से मुराद हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है, मजहब चलने का रास्ता जिस पर चला जाता है, ठीक है, चलने का, तो दीन इस्लाम हमारा मजहब है, हम इस्लाम पर चलते हैं, इस्लाम ये दीन फितरत है, इस्लाम में सब कुछ है, जिस राइट्स की बात करते हैं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज अदीला ताला इन्होंने इस्लाम ही को नाफिज किया, कोई जकात लेने वाला नहीं था, ऐसे लोग गनी थे, खुशहाल थे, कोई मतलब कि वहां पर डकैती इसका कोई तस्वुर नहीं था, वो इस्लामी रियासत ही थी, वो मजहबी था, वो इस्लाम व दीनी था, क्योंकि जब इस्लाम इंप्लीमेंट हो गया ना, जिस मकसद के तहत पाकिस्तान आजाद हुआ, यानी मैं दोबारा अर्ज कर दूं, मैं काले को काला बोलूंगा, मैं काले को सफेद नहीं बोलूंगा, लोग बोले उसकी आंखों का इलाज करा हुआ आदमी है कौन है,
बिल्कुल
ठीक है, ये बात नहीं है, मगर जो हम बिल्कुल इफरात और तफरीत छोड़ देते हैं, एतदाल छोड़ देते हैं, बैलेंस को छोड़ देते हैं, हम इसकी तरफ आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो बात है ना कि हम आजाद क्यों करवाए गए, तो अब मतलब कि आप जो किराए के घर में रहकर अपने घर में रहता है ना, जब उसको ऑनरशिप का मकान मिलता है, उसकी खुशी का अंदाजा उसी से पूछो, कि जब किराएदार के घर में रहता है और जब किराएदार उसको बार बार ये नहीं करो वो नहीं करो इसको नहीं करो उसको नहीं करो दस किस्म, लेकिन जब वो अपनी चीज लेता है ना, तो जब किराए का मकान जब अपना मालिक मकान बनता है, यकीन मानो सबको मिठाइयां खिलाता है ना, खुश कितना होता है यार वो, कि आज मेरा मकान है,
आज मेरा
मकान है, ये उनसे पूछो जो किराए के घर से निकलकर अपने घर में आए, और हम चूंकि शुरू से अपने घर में रह रहे हैं, हमारे वाली साहब रहते ना किराए के घर में, उन्होंने ओनरशिप ले लिया, घर ले लिया, मेहनत मजदूरी की, घर बना लिया, आज हम जिस घर में रह रहे ना, तो हम कह रहे हैं इधर तो पानी भी सही नहीं आ रहा है, इधर तो हवा भी सही नहीं आ रही है, अगर ठीक है रहते किराए के घर में, वो किराए के घर में रहकर भी एयर कंडीशन वाले भी किराए का घर हो ना, तब भी पिंचात और मगजमारी इतनी होती है कि अपना प्राइवेट झोंपड़ा जो है ना, जिसका आप ओनरशिप का दावा कर सकें, बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने ये किया है ना उसको पता होगा, ठीक है, जो पैदल चल रहा होता है ना उसको पूछो, अब जिसका बाप पैदल चलकर छोटी सी गाड़ी लेकर चला था ना, वो बोले ना बेटा मेरी गाड़ी में बैठ, तो बोलेगा बाप इस गाड़ी में कौन खच्चर खच्चर में बैठेगा, तो वो बोले बेटा पैदल चलता तो पता चलता कि ये खच्चर गाड़ी भी किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है, मैं क्यों किसी कंपनी का नाम लूं, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, अब चूंकि हमने वो हालात देखे ही नहीं है, पढ़े आपने भी किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन हम दोनों का विजन अलग अलग है, अभी इससे पहले आपकी मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी अमर भाई, ठीक है, लेकिन हमारा विजन अलग अलग है।
आप तो इमोशनल हो गए और कहानी को कुछ और नहीं रुख से मोड़ दिया, क्योंकि आप अपने बदन से
फेस टू फेस में चले गए या इमोशनल का ब्लेम लेकर आप चलते रहते हो?
बताता हूँ आपको,
नहीं वो लोग ही नहीं आज हमारे साथ जो इमोशनल कहकर मतलब इमोशनल करने की कोशिश करते थे।
नहीं मैं आपको बताऊंगा, आप इमोशनल इसलिए हो रहे हैं,
नहीं इमोशनल वही नहीं,
एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ना, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो दुनियावी एग्जाम्पल है, और हर बंदा आपने एक मिसाल दे दी कि एक गरीब बाप ने अपना घर बनाया और ये करा और रेंट के घर में, आपने ये जो बातें की ना, तो ये बातें ना करें
तो क्या करूं?
देखिए मैं आपको बता,
जो आप बोलोगे वो
आपने, आपने एक मिनट,
क्या बुजुर्गो
आपने जो
आप बोलो तो नहीं यार,
जो सही बात और सही,
आप एक बात सुने, आप एक बात सुने, आपने बचपन से
एक नाना, आप अभी आप जवानों पे देखा क्या?
हमने
उम्र गुजारी है पाकिस्तान, हमने देखा है कि हमारे बड़ों ने
देखा था, बड़ों ने पाकिस्तान लुटेरों का पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान देखा था, चोरियां हो रही थी।
अगर हम पाकिस्तान आपको ना देते तो आप क्या करते?
इससे पहले भी
कुर्बान देते,
इस्लाम के नाम पे बना तो, लेकिन इस्लामी कानून का निफाज नहीं हुआ ना, हम इसकी
गलती किसकी है? आप लोग की गलती,
हमारे पाकिस्तान बनाया बना दिया, उसके बाद जो लोग आए उन्होंने सबको करना था ना, हमने थोड़ी करना था।
नहीं आपने नहीं बनाया ना पाकिस्तान, वो तो बड़ों ने बनाया, जब आपको पाकिस्तान बना हुआ मिला था, लेकिन
आपको भी पाकिस्तान बना हुआ मिला,
ये बात नहीं है,
इन्होंने कुर्बानी दी वो तो दुनिया चले गए।
बापू इसके बाद बापू मैं अर्ज करता हूँ, इनको भी पाकिस्तान बना हुआ मोला मकोल आपके,
लेकिन
आपको भी आप सुन तो ले अरे मैं आपके पार्टी के आदमी बन रहा हूँ यार, करो यार। तो देखो इनको पाकिस्तान बना हुआ मिला, आपको बना हुआ मिला, ठीक है। ये बजाहिर लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड लोग हैं, मुझे नहीं लगता, मैं इनको पर्सनली इनकी जिंदगियों में झांका हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये को बहुत वेल सेटल्ड लोग नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मगर ये खुश हैं अपने मुल्क से,
बेशक,
जबकि इसको पता है कि ये नौजवान मेरे सामने तेजी से बात कर रहा है, मेरे मुल्क में बैठकर मुझे से ये तेजी से जुमरों में बात कर रहा है, मगर ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाया, लेकिन इनको भी बना हुआ मिला, मगर ये खुश हैं,
खुश,
आपको भी बना हुआ मिला, मगर आप खुश नहीं हो। जो चीजें, जो कमजोरियां और जो
बीमार हो गए ना,
नहीं जो आप बीमार हो गए ना, देनी तो ठीक है, चलो इसको पकड़ के रखना, नहीं नहीं मार नहीं मारेगा ये भैया, पहला पहला
आप बताएं, इसके बाद आप थोड़े से मेरे को टाइम दीजिएगा, आपके ऊपर बताऊंगा,
टाइम ही टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब के ये इनको भी बना हुआ मिला, ये खुश है, आपको बना हुआ मिला मगर आप खुश नहीं है, ये भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी मतलब कि यहाँ रहकर कोई इन्होंने यूं 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 बहुत कुछ ऐसा कर लिया हो ना, तो हो सकता है कि जो इस्तेसाल या जो हक तलफी या जो कमजोरी और जो मतलब के परेशानियां आप लोग फेस कर रहे हैं, हो सकता है यही चीजें इन लोगों ने भी अपने टाइम में फेस की हैं। अब बुजुर्ग पहले
जितनी तकलीफें हमने सुनी या पढ़ी अपने विजन में, वो तकलीफें अभी हमारे सामने नहीं, हमें बहुत उससे बेहतर पाकिस्तान नजर आ रहा है। हम कहते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जो तकलीफें सही हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बानी दी है, नौजवान है उसमें बुढ़ापे यानी कि बड़ी उम्र वाले थे, तो आज हम जहां चाहें अपना कदम आसानी से रख सकते हैं, आजादी से रख सकते हैं। आज हमारी मस्जिद के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आज हमें कुरान पढ़ते हुए कोई उंगली नहीं उठा सकता, आज हमें कहीं जाके अपना चौक दर्श करना चाहिए कोई हमारी उंगली नहीं
उठा सकता। मस्जिद चले के नाजरी आपकी तरफ आता हूं मैं, अब सलमान साहब मैं एक बात करूं,
उनपे भी कोई पाबंदी नहीं मुल्क में,
दावत इस्लामी का तो एक अपना मैटर है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में एक बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, लेकिन मैं मस्जिद चले के नाजरी से एक बात अर्ज करूं, जो अभी याफूर अत्तारी साहब ने जो बयान किया, तो ये कहते हैं कि जब मुल्क आजाद नहीं था ना, तो उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी तकलीफें थी, लूटना ये वो लूट मार मची हुई थी, बहुत सारी चीजें थी, और एक आजाद का ख्वाब देखा गया और हम आजाद होकर एक नए मुल्क में आए। अगर आज भी यही चीज अगर हमारे मुल्क के अंदर हमें देखी जाए, पढ़ी जाए, हो, अगर कल किसी की इज्जत का तहफ्फुज़ नहीं था और आज भी हम कहें कि आज भी इज्जत का तहफ्फुज़ नहीं है, कल भी लूटमार मची थी हम कहें कि आज भी लूटमार मची हुई है, कल गैर लूटता था आज अगर अपना लूटेगा तो ये सवाल पैदा होंगे कि फिर यानी कि मकसद आजादी कहाँ है। जश्न आजादी तो मौजूद है 14 अगस्त को, लेकिन मकसद आजादी कहाँ है? اور یقیناً مقصد آزادی پر اگر ہم بات چیت کریں تو ہم اپنے مقصد آزادی سے بہت دور ہیں, ہم اپنے مقصد آزادی سے دور ہو چکے ہیں. میرے ساتھ جو میرے نوجوان اسلامی بھائی موجود ہیں, میں انہیں جس سمت لانا چاہ رہا ہوں وہ میں ان کے سامنے رکھتا ہوں, تاکہ ظاہر ہے کہ اب کمپلینٹس کی دنیا بھی بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے, میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے مقصد سے بہت پیچھے ہیں, مگر کچھ نہ کچھ مقاصد حاصل بھی ہوئے. ایسا نہیں کہ بالکل ہم زیرو پر ہیں یا مائنس پر ہیں, کچھ نہ کچھ مقاصد حاصل ہوئے ہیں. ابھی جو میں کچھ کر رہا ہوں, ہم جو بیٹھے ہوئے دیکھ کے سن رہے ہیں, یہ بھی ان مقاصد کے حصول میں سے ایک مقصد ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ مقاصد حاصل ہوئے بھی ہیں, یہ بھی ابھی جہاں جائیں گے تو ایک ہو سکتا ہے کہ بہت فریلی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چلے جائیں. حالات تو 19 ہوتے رہتے ہیں شہروں کے, ملکوں کے, ریاستوں کے, مملکتوں کے. بہت زیادہ پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہمیں پتا ہے کہ شام کو 5-6 بجے کے بعد وہاں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. 6 بجے کے بعد بزنس ہی نہیں ہو سکتا, یا تو پھر 10-10 بجے تک مارکیٹ اور دکانیں کھلی رہتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں مقصد کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ کچھ مقاصد اگرچہ ہم نے حاصل کیے ہیں, لیکن بہت سارے مقاصد ایسے ہیں جن کا خون ہو چکا, جس کی وجہ سے آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں یا آج کی ہماری جو جنریشن ہے یا کمنگ جنریشن ہے, یہ مطلب کہ وہ پریشان ہے, کنفیوز ہے, نیگیٹو چلی جاتی ہے, اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہوا غلط ہے. ہم صرف اور صرف کمزوریوں پر ڈبیٹ اور بحث کرنے کے بجائے ان کمزوریوں کو دور کرنے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا, ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. 14 اگست کو آپ یہ سلسلہ جو دیکھ رہے ہیں, تو اب یہ نہ دیکھیے کہ اس ملک میں یہ پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اب یہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا. اب میں سلمان بھائی بہت دیر سے موو کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ بس اب آ جائے.
چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ یہ اتنا بولیں گے لوٹ مار یہاں پر ہے سب کچھ ہے. اب یہ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں اگر 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے نا, وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے, صرف اس کا موازنہ کر لیں.
بھائی اس چیز کے
وہاں ایک دن لائٹ گئی تو پورے ملک میں لوٹ مار شروع ہو گئی تھی, جہاں جہاں لائٹ گئی تھی وہاں لوٹ مار شروع ہو گئی تھی. ہمارے یہاں تو اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کبھی ایسا ہوتا ہی
بہت زیادہ ٹائر جلا دیں گے,
جب نہیں ہوگا ٹائر جلائیں گے,
بہت زیادہ ٹائر جلا دیں گے, چلو لائٹ نہیں ہے روڈ پر ٹائر جلا
ہوگا.
بابا جی جو ہیں مطلب یافور نام بتایا انہوں نے اپنا,
یافور.
اچھا میں آپ کو چھوٹی سی مطلب ایک بات کرنی تھی کہ ہمارے دادا مطلب ہے نا سری لنکا سے مطلب آئے تھے, اور اس طریقے سے وہ تھوڑا بتا رہے تھے اس وقت جو ہے نا مطلب مکان کچے ہوتے تھے, وہ بندے بڑے سچے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ 25 روپے کماتے تھے, کھایا پیا کوئی سیونگ نہیں, خوش حال, ٹھیک ہے نا. آج کل کمپٹیشن کا دور ہے. ابھی مجھے آپ سے تھوڑا مطلب آپ ماشاء اللہ فیورٹ کی بات کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ہے نا, ایز اے بینگ اے پاکستانی مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے کہ صرف پاکستان کے اس پہ اس کے نظام پر مجھے مطلب اتفاق نہیں ہے. ایز اے پاکستانی میں بہت زیادہ جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہوں. آپ کو مطلب کبھی جو ہے نا کہ مطلب الیکٹریسٹی کی وہ کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے, ڈبل کیبن گاڑی میں بیٹھے پروٹوکول لی سکون سے, مطلب اسی میں آپ لوگ جو ہے نا مطلب گھوم کر پھر کر آئے, اے سی میں بیٹھے اور سکون سے بیان ویان کر کے جب آپ باہر نکلیں گے نا, میں عوامی نمائندہ ہوں
باہر
روڈ پہ, آج بارش ہوئی ہے, آج آپ روڈ کے حالت دیکھیں,
کس نے کرا
ہے؟
نہ
کسی نے بھی نہیں کرا,
سچی میں میں نے نہیں کیا.
اچھا عرض کرتا ہوں شاہد بھائی, یہ نہیں شفیع بھائی, یہ
آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا,
استغفر اللہ. مجھے تو مطلب مجھے تو آپ نے دروازہ کھولا ہے کہ میں کچھ اظہار خیال کر سکوں گا, آپ کا تو میں شکریہ ادا کروں گا. کہ یہ اگر میں خود کہنے جاتا تو شاید کوئی کہتا کہ یار یہ اپنے منہ میں مٹھو بن رہا ہے, لیکن آپ نے میٹھا میٹھا
مٹھو مٹھو.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن میں آپ کو کبھی بھی مبتلا نہ ہونے دے.
آمین.
وہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا, قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. تو یہ بہادر شاہ ظفر کا یہ کلام ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا, قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. تو جب لوگوں کو ہے نا ہمارے بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن یہ تو ابھی سمجھے کہ اس کو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوا. باقی میں دعوت اسلامی میں 91 میں, میری عمر اس وقت 21 سال کی تھی, سوری, ہم موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے اور موٹر سائیکلوں پر ہی ہمارے معاملات ہوتے تھے, بسوں میں موٹر سائیکلوں میں ہمارے ویگن بس ٹاور سے ویگن لیتے تھے, پھر کہیں جاتے تھے موٹر سائیکل لیتے تھے پھر کہیں جاتے تھے. یہاں مطلب بندر روڈ سے مال مدنی ماحول میں آنے کے بعد بس لیتے تھے, اس بس میں بیٹھتے تھے, حیدرآباد زمزم نگر اترتے تھے, وہاں سے کوسٹر لیتے تھے, شہزاد پور جاتے تھے, ڈنڈو آدم جاتے تھے, یہ سب کرتے تھے. پھر ٹرین میں جب آتے تھے تو آپ, ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی استنجا خانے ٹرین میں جو باتھ روم ہے نا اس کے باہر پلیٹ فارم پر کبھی آپ سوئے نہ ہو. میں تقریباً ہر ہفتے اس پلیٹ فارم پر سوتا تھا باتھ روم کے باہر, ٹھیک ہے, اور چادر بچھا کر اس پر ہم سو جاتے تھے کیونکہ وہ سیٹ نہیں ہوتی تھی. اور ٹرین رات کو 2:30-3 بجے جاتی تھی, اس پہ ہم بیٹھتے تھے. اور پھر یہ ڈرگ روڈ اسٹیشن ہے, وہاں ہم اترتے تھے, وہاں پر فجر کی نماز پڑھتے تھے, پھر کنویس لے کر ہم گھر آتے تھے, ٹھیک ہے. ایسا ایک عرصے تک ایسا ہی انداز رہا ہے. تو شاہد بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ سندھ انتظامی کابینہ جب بنی تھی, تو ہمارے جو باب الاسلام کے جو سفر ہوتے تھے ایسے حالت ہوتی تھی کہ ہم لوگ ڈھیر ہو جاتے تھے, پڑ جاتے تھے. یعنی یہ جو ڈھابے بنے ہوئے نا چار پائیوں والے, تو ہم تین چار اسلام بھائی, تین اسلام بھائی گاڑی چلانے والے ہو, تینوں میں طاقت نہیں کہ گاڑی چلا سکے, اور یہ پڑ جاتے. اس سے آپ کو یاد ہوگا ہمارے گروپ میں شورا تھے, وہ ایسے بوش ہو کر پڑے تھے کہ کوئی آ کے ان کا جیب سے سارا سامان نکال کے لے گیا, پتہ ہی نہ چلا ان کا جیب کو خالی ہو گیا. وہ برابر مجھے یاد ہے ہم ہائی وے پر پہنچے تھے ایک مرتبہ, ہم دو اسلامی بھائی تھے, ہم دونوں میں طاقت نہیں تھی آجی شاہی کہ گاڑی چلا سکے. اور ہم جا کر وہ مسجد جو ہائی وے پہ بنی ہوتی ہے اس میں جا کر گلوک کر کے سو گئے. ہمیں 1.5-2 گھنٹے جب تک سوئیں گے نہیں نا, تو وہ دوپہر کا وقت تھا, دھوپ شدید تھی. تو یہ صرف میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویگن بس ٹریفک, اپنا بیڈ روم الگ میرا جب میں مدنی ماحول میں آیا, اور جب میرا پہلا مدنی قافلہ تھا نا اس میں, پہلے مدنی قافلے میں پہلے ہی دن جب میں نے اپنے امیر قافلہ کو کہا کہ حضور مجھے وہ باتھ روم میں جانا ہے, جھاڑیاں ہیں اس میں ہم چلے جائیے, ٹھیک ہے, ان جھاڑیوں میں ہم کو بھیجا گیا. تو یہ بھائی کنٹینیو, یہ تو کہیں چلتے رہے, تو ایسا نہیں ہے. اور جو آپ یہ لائف کہہ رہے نا, یہ قید و بند کی زندگی ہے. آپ کو میں مطلب کہ قید کر کے کسی مطلب ویل فرنشڈ اے سی والے اور اس میں دنیا بھر کی چیزیں ڈال کے بھی رکھ دوں اور آپ اپنی مرضی سے باہر نہ نکل سکو نا, تب میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کو اس کی زندگی اچھی لگتی ہے کہ وہ زندگی اچھی لگتی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا آپ کا تھوڑا سا وہ جواب. رہا بات کہ وہ اے سی وغیرہ, تو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جنریٹر آن کیا, جنریٹر آف کیا گھر کے اندر. جس لوڈ شیڈنگ کی آپ شکار ہیں اسی لوڈ شیڈنگ کا میں بھی شکار ہوں. ہمیں جنریٹر بھی حال ہی میں لگایا, میرے گھر میں جنریٹر بھی نہیں تھا, یو پی ایس ہوتا تھا وہ بھی روتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر جنریٹر کی ترکیب بنی اور اب یہ ہم نے گیس والا جنریٹر بھی لے کر تھوڑے عرصے پہلے لگایا ہے. تو یہ جو جنرل جو ایشوز ہیں جو, اس میں کم ہی لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں, لیکن کم لوگوں میں ہم لوگ نہیں آتے. دوسرا, اگر ہم اس طرح کے کوئی معاملے میں ہیں بھی نا, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک, ہم نے اس میں بھی ایک پین ہے, ٹینشن ہے, شاید وہ آپ کو فیل نہیں ہو, اس لیے نا کہ یہ بہت ساری چیزیں جس کے گرد ہمیں نا, وہ وقف کی چیز ہے, مسجد وقف کی ہے, کمرہ وقف کا ہے, مکتب وقف کا ہے, فلاں وقف کا ہے, یہ کئی لائٹیں جل دیں گی وقف کے مال کی ہوتی ہیں. اور وقف کے مال کا ہونا یہ اپنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ پرائیویٹلی تو چلو بھائی اللہ نہ کرے اگر میں نے آپ کی کوئی چیز طلب کر لی سمبھ تو میں آپ سے معافی مانگ لوں. وقف میں تو کوئی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ مجھے تاوان دیا جائے گا.
میڈم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جائیں گے تو کب کام کریں گے؟
یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں بیٹا, یہ مطلب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ میں وہ بات آپ کو کر رہا ہوں سلمان بھائی, تھوڑا سا ٹاپک سیٹ کر, یہی چیز اگر ہمارے یہاں رائج ہو جائے نا تو ہمارے نوجوانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. احساس ذمہ داری جس کی کمی ہے ہمارے یہاں. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین ہے, اور بیت المال جہاں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا تھا اور وہیں سے مال ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا, आप उस जगह को खाली करके बांट कर वहां दो रकत नफल अदा करते और दो रकत नफल अदा करने के बाद फरमाते के ए बेतुल माल की दोरो दीवारों गवाह हो जाओ मैंने तुम्हें अदल से भरा था अदल से खाली किया। ये मामूली बात नहीं है, मतलब के जर्रे जर्रे का हिसाब है। तो जर्रे जर्रे के हिसाब को मामूली बात ना समझा जाए क्योंकि चिंगारी भी गोदाम में आग लगा देती है। तो आप बोलोगे चिंगारी से क्या डरना, गोदाम को आग लगाने के लिए चिंगारी भी काफी होती है। ये तो वो तस्वुर था जो आपने हमारे बारे में गौर किया। ये भी हमारे हाजी शाहिद हैं, ये भी सिक्योरिटी जोन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब हमें पता है कि वो है ना कि वो ए तायरे लाहूती उस रिश्ते से मौत अच्छी, जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही। लेकिन अब हालात ने और कुछ चीजों ने हमें पाबंद किया, हमें बांध कर रखा है। कोई भी इस तरह की चीज है ना, बाज लोग अपने शौक से लेते होंगे, लेकिन ये चीजें शौक वाली नहीं है। और जब आपका जिन चीजों में शौक ना हो और वो चीज करने का भी आपको पाबंद कर दिया जाए ना, तो ये चीज लज्जत नहीं बनती, ये मीठी आजमाइश कह सकते हैं इसको, इसको लज्जत नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो हो गया एक बात। अब रही बात कि वो ये नहीं देखा वो नहीं देखा, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो जैसे इन्होंने भी अपना इजहार ख्याल किया, आपने भी अपना इजहार, अभी आपके तो मैं रिलीजन पर ही सिर्फ रहा हूं, आपके तो तीन टॉपिक मेरे को याद है, आपके तीनों के इंशाल्लाह ताला हम जवाब अर्ज करेंगे और हमारे बुजुर्गों से मैं अब टाई भी लेता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आज जैसे बारिश हुई है तो इन बारिशों में हमने भी मोटरसाइकिलें चलाई हैं और यही हमारे सामने भी कार वाले चले हैं और मोटरसाइकिल पर हम पर भी ऐसा पानी उड़ाते हुए गाड़ी वाले निकले हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मोटरसाइकिल पर सिग्नल पर खड़े हुए वेगन वाले कुछ किसी ने पिचकारी मारी और सारे कपड़े उसने पत्ती वाले पान से भर दिए हमारे, ठीक है। हमने भी ये देखे हैं, हमने भी मतलब कि एक्सीडेंट भी उठाए हैं, हादसे भी उठाए हैं, ये भी उठाया, गाड़ी को हंसा, मोटरसाइकिल को हंसा। मैंने भी नई मोटरसाइकिल ली थी, खरीदी थी, अपने काम पर गया था, वापस आया मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, ठीक है। मेरी भी कार को एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। मेरे बच्चे को भी हादसा हुआ है, मेरा बच्चा भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, मैं भी जिस हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर बैठा था इसी जिम्मेदारी पर रहते हुए, मेरे बेटे को भी वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, इमरजेंसी वार्ड के अंदर में था, डॉक्टर कहता था यहां से ले जाओ वहां से ले जाओ, हम नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम जो जनरली तौर पर एक आवाम फेस करती है, हम भी आवाम ही है, आप भी आवाम है, हम कोई खास लोग नहीं है, हम कोई स्पेशल पर्सन नहीं है मुल्क के, हम कोई ऐसे मतलब के कोई अथॉरिटी पर्सन भी नहीं है मुल्क के, एक आम आवाम है। हमारी तो मजहबी तहरीक है, गैर सियासी तहरीक है, हम कौन से हमें खसूसियत हासिल हो गए। अगर हमें कोई थोड़ा बहुत मतलब कि ये चीजें जानते पहचानते तो तंजीमी तौर पर है, लेकिन एक अवामी लिहाज से अगर हम जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो हमारे लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से जो मदनी जहन लिया है, मैं आपको अर्ज करता हूं, अगर कोई जान पहचान वाले आकर हमें इमिग्रेशन की क्यू से निकालते तो हम क्यू से भी नहीं निकलते, हम क्यू में रखकर अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर मतलब लोगों को बोलने का मौका ना दें। हालांकि वो एक बैठे बैठे बगैर मांगे के रिस्पेक्ट मिल रही है कि भाई अंदर में से लोग बैठे हुए जो पहचानते हैं कि इमरान भाई आगे आ जाइए, इमरान यूं आ जाओ, इमरान यूं आ जाओ, लेकिन हम कहते थे नहीं यार अभी थोड़ी देर में लाइन खत्म हो जाएगी। क्योंकि सलमान भाई मैंने दुनिया के बहुत इमिग्रेशन देखे एयरपोर्ट पर, जैसे आपने खुद कहा था ना दुनिया के कई मुल्कों में जाते हो, जितना अच्छा और आसान इमिग्रेशन अपने मुल्क का देखा है ना मैंने, कम मुल्क में, मैं नहीं कहता किसी मुल्क में भी नहीं है, कम मुल्क में। क्यों? आप सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को कंपेयर कर रहे हैं अपनी सोच से कि यार हमें ये होना चाहिए था, या बात चीजें शायद हो सकता है मीडिया पर दिखा दी जाती हो, तो बाद औकात मीडिया पर ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो मुल्क की हकीकत नहीं होती, उसकी हकीकत कुछ और होती है। बात तो ऐसी जगह मिलेंगे जहां अरबों करोड़ों लोगों को इस्तंजा खाना दस्तियाब नहीं है, करोड़ लोगों को वहां पर छत दस्तियाब नहीं है, ऐसे मुल्क हैं दुनिया में तकरीबन 200 के आसपास ममालिक कहलाते हैं। आपका मेरा देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज है, ठीक है ना, क्योंकि आप जिन कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं ना, मैं उसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकता हूं कि ऐसी कंप्लेंट्स है ही नहीं, रिश्वत है ही नहीं और हुकूक हक तलफी है ही नहीं, ये मतलब के बदअनुमानी है ही नहीं, ये है ही नहीं, जुल्म सितम नहीं, मैं इसका इनकार नहीं करता, बिल्कुल है। लेकिन मैं क्या करता हूं सलमान भाई, मैं देखता हूं कि यार ये चीज है, 200 ममालिक हैं कमोबेश, इन 200 ममालिक में ये चीजें कहां कहां, तो पता चलेगा कि मेरे मुल्क का नंबर कहीं पर 40वें नंबर पर है, میرے ملک کا نمبر کہیں پر 110 نمبر پر ہے, میرے ملک کا نمبر کہیں پر 90 نمبر پر ہے, یہی ہے.
تو ہم اس کو تسلی کو تسلی دیتے ہیں ہمارا نمبر 40 ہے تو ہم یہ سوچے نا کہ ہم 200 نمبر پر کیوں نہیں ہے.
درست ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 40 پر ہیں تو یہ 40 پر رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 40 پر ہیں نا, لیکن آتے سال میں اپنے آپ کو 39 نمبر پہ لانا چاہ رہا ہوں. یہ تب ہوگا کہ جب میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ سگنل توڑ رہے ہیں, کیا میں خود رک رہا ہوں؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ سفارشیں دے کر رشوت دے کر آگے بڑھ رہے ہیں, کیا میں رک رہا ہوں؟
اگر میں اکیلا سگنل پہ کھڑا ہوں گا لوگ ہنسیں گے.
یہ تو
جو مائنڈ بن چکا ہے جی, آپ رات کے 2 رہے ہیں, سگنل بند ہے, میں کھڑا ہوں تو میرے برابر سے جو نکلے گا نا وہ میرے اوپر ہنس کر جائے گا.
قابل تعریف وہ شخص ہے جو ہنس کر گیا.
چلیں میرے یہ نیک عمل سے مجھے کیا فائدہ؟
یہ قابل تعریف نیک عمل سے جو کرے گا نا اس کو تو فائدہ ہے. یہ آپ ہائی وے پر گئے, ہائی وے پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر گاڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے, دیکھیے آپ نے؟
جی جی میں نے دیکھی.
ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی کیوں لگا دیا ہائی وے پر؟ بلکہ بعض جگہ پر دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کی ہوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں اوریجنل گاڑیاں رکھ دی ہیں. کیوں رکھی ہیں؟
لیکن میرے
نہیں کیوں رکھی ہے
بتاؤ. میرے رکنے سے ایک چیز یہ ہوگا کہ جو اسٹریٹ ڈرائیور ان کو ضرور فائدہ ہوگا.
نہیں اس پر بھی انشاءاللہ میں فائدہ ہوگا. نہیں میں اس پر بھی عرض کروں گا, بالکل بالکل. یہ ڈاؤٹ موجود ہے, نہیں یہ ڈاؤٹ موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا بھی میں انکار نہیں کروں گا. لیکن یہ بتائیے کہ وہ پہلے تو مجھے اس پر تو آئی ہے کہ کیا ایک بورڈ جس پہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ تیز رفتاری تباہ کاری, اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ چند لمحے آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, اس طرح کا ایک خالی بورڈ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ایکسیلیٹر کو اوپر نیچے کرنے کا جی کرتا ہے, تھوڑا سا مائنڈ اپیل کرتا ہے کہ بھائی یار کیوں لگایا؟ جب ایک بورڈ ایک جیتے جاگتے آدمی کو اپیل کر رہا ہے, ایک ایڈورٹائزمنٹ کا بورڈ ایک جیتے جیتے آدمی کو خریدنے کی دعوت دے رہا ہے, وہ کچھ نہیں بولا, تو ایک میرے پاکستانی کا پاکستانی قانون پر سر عام عمل کرنا, کیا گزرنے والوں کو اپیل نہیں کرے گا؟ یہ ہنس کر تو چلا گیا لیکن کہیں جا کر یہ ایک دن بولے گا سلمان بھائی یار ایک مرد کا بچہ دیکھا میں نے یار, تو رات کے 2 بھی یار سگنل پر کھڑا تھا یار, یہ مرد کا بچہ تھا. اب آپ بولو گے یہ مرد کے بچے کو کوئی مرد کا بچہ لوٹ کے لے گیا.
اب یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ قانون جو نا ہمارے یہاں قانون توڑ دیں, یہی اگر کسی اور تو رات کے 4-3 بھی نا سگنل پہ کھڑے ہوں گے, وہاں پہ قانون نہیں توڑیں گے, اپنے ملک میں قانون توڑ دیں.
صاحب آپ موبائل لگتے ہو 1200 کا, حاجی صاحب آپ کو موبائل شاید 1200 سے زیادہ موبائل چلانے نہیں آتا ہے.
الحمدللہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا آج تک میرا ایک بھی موبائل نہیں گیا.
یہ آپ کے ساتھ
ایک موبائل نہیں گیا کبھی بھی,
نصیب
ہے موبائل
عمل کر لو نا.
مہنگا موبائل کا کبھی اللہ کا کرم نہیں گیا. حاجی صاحب میں جو کاروبار کرتا ہوں نا کہیں بھی چلے جاؤں نا وہاں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مجھے ایسے ایک دن ذہن میں آیا ملا یار میں دارالحتہ سے جا کے معلوم کروں, تو وہاں گیا میں, تو وہاں جا کے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اسی طرح رشوت کے پر گزارا نہیں, کوئی طریقہ بتائیں, کوئی سب بتائیں کہ سلسلہ یہ ہے. چلے میں تو مال صحیح دیتا ہوں لیکن آگے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ مانتے نہیں ہیں. تو مجھ سے کہنے کہ یار آپ اس کے لیے رستہ نکلوا رہے ہو, وہ کام ہی چھوڑ دو. میں الحمدللہ وہ اس فیکٹری میں مال دینا چھوڑ دیا میں نے الحمدللہ, اور جگہ سے مجھے بہت کام ملا. اور اب بھی میں کہیں بھی جاتا ہوں سب سے پہلے یہ لفظ کہتا ہوں کہ میں 1 نہیں دوں گا, آپ نے آرڈر دینا ہے دو, نہیں دینا مت دوں. الحمدللہ شکر مالک کا خوش ہوں, کاروبار اچھا ہوا.
حضرت مجھے آپ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, پرمیشن بھی مانگی تھی, آپ 101 بہت کرتے ہیں تو
کیا کرتا
ہوں 101 آپ اپنے پروگرام میں فیس ٹو فیس میں 101 بہت کرتے ہیں نا, مطلب کسی سامنے
والے فیس ٹو فیس.
ہاں تو میں آپ سے 101 کرنا چاہتا ہوں,
میری گاڑی پر تو میرے رہنے سہنے پر تو میری زندگی کے تمام چیزوں پر
ایپلیکیشن لگا
دیا. آپ مطلب کہ کھل کر جو چاہیں کتاب کھولیں. اگر میں نے تو ابھی تک تو آپ کی ذات پر کوئی کلام کیا
لیکن آپ نے
نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا, لیکن دونوں سلسلوں میں آپ سے میری ذات پر کلام ہوا. اور میں اگر آپ میری کتاب پر میری کتاب کے صفحات کو کھول کر غلط ریڈنگ کرو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو صحیح نا کہ یار آپ الٹی کتاب پڑھ کے پڑھ رہے ہو, کتاب سیدھی تو کرو یار. آپ کو
اپنا دکھ نظر آ گیا, آپ کو وہ دکھ نظر نہیں آیا جو آپ نے یگسٹر میں یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ ایک باپ نے اگر فیکٹری لگائی ہے, یہ ان صاحب نے میں کسی صاحب نے کہا تھا کہ ایک صاحب نے جی جی آپ نے کہا تھا شکریہ, آپ نے کہا تھا کہ ایک باپ اپنی فیکٹری لگا کے دے بچوں کا, بچوں کا کام ہے اس کو چلانا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
कि आप इस बात के एग्री हैं कि आप जब जवान नौजवान थे और जब आप मदनी माहौल में नहीं थे इस दावत इस्लामी के, तो आपने यही सुना कि मुल्क के खराब हालात हैं, आपने भी स्नैचिंग देखी, आपने भी लूटमार देखी, यहाँ आपने मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते हुए देखे, और अब तक आप मदनी माहौल में आ गए और अब तक ये हालात हैं, ठीक है?
नहीं,
अब तक ये हालात
नहीं है।
आपको अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती या ब्लू बत्ती जल रही है,
ना लाल बत्ती है ना ब्लू बत्ती है, बल्कि मेरी हेडलाइट भी नॉर्मल ही है।
और आपके साथ
लेकिन अब ये पर्सनल को बनाया,
देखिए आपने मजबूर कर दिया मुझे पर्सनल होना पड़ा,
चले आप होते रहे,
आप एक शख्सियत है, ठीक है, आप अपनी बात नहीं, लेकिन एक आम आवाम की बात अगर की जाए,
कोई भी मुल्क के अंदर दुनिया में आजकल के दौर में भी देखे तो जिसको मतलब के लोग दे पर्सनैलिटी बनते हैं, एक प्रोटोकॉल वाइज पर्सनैलिटी नजर आना और एक अपनी नेचर वाइज पर्सनैलिटी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का अलग है। आप जो मुझे अपना माजी याद दिला रहे हैं ना अपने अम्मार भाई, मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले एक ऐसे काम काज और ऐसी लाइन के अंदर था, ये मुझे माजी के जानते हैं शायद सलमान भाई, कि ये तो अभी भी इनको तो रास्ता, हमारा तो रास्ता था ही नहीं, यहाँ तो मतलब कि मोबाइल क्या करूँ तो छींकने पर भी रिश्वत है
इस वक्त मेरे साथ,
ठीक है, छींकने पर भी रिश्वत है ना, एक ऐसे कल्चर के अंदर अपनी मतलब ग्रो किया है कि अगर ये मेरे माजी को शायद सलमान भाई देखे, आपने तो मुझे माजी में देखा ही नहीं है, मैंने एक ऐसे कल्चर से ग्रो किया है कि वो कल्चर की आपने फोटो भी नहीं देखी होगी, सुनना तो बड़ी दूर की बात है, उस कल्चर को हमने अपनी आंखों से देखा, उस कल्चर में हमने ग्रो किया है, बहुत करीब से वो कल्चर देखा है हमने। और मैं आपको सही कह रहा हूँ कि मैंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने के बाद, चलो खत्म करें, मैं खुद अब वो नहीं हूँ, मेरे साथ कई थे वो अब नहीं है,
मैं भी कैसे चेंज करें, मिसाल के तौर पर जो आप कह रहे हैं मैं भी समझ गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या उस चीज का डैमेज डिटेंशन लगने थे हम
नहीं, मैं आपको
उनको देखकर जान शुरू है यार, सोच ये है ना, देखकर जान शुरू
है, अब तो हम किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ चले गए,
मैं इसलिए फील्ड का नाम भी नहीं ले रहा,
मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि खराबियां नहीं है अम्मार भाई, ये मैं नहीं अर्ज कर रहा, लेकिन मैं इस सिलसिले के तवस्सुत से अपने करोड़ों पाकिस्तानियों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी है, सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि खराबी को रोने के बजाय इस खराबी को दुरुस्त करने में आपने क्या किरदार अदा किया,
मुल्क छोड़ दिया, मुल्क से चले गए,
मुल्क से चले गए, वहाँ जाकर क्या किया,
वहाँ की काम किया, मैंने मजदूरी की, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लिया उन्होंने,
नहीं किया फ्यूचर सिक्योर,
नहीं
मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, नहीं किया ना, मैं गया ना दुनिया से बाहर,
बिल्कुल
मैंने इन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों से दुनिया में बात की है ना, उनके बच्चों के फ्यूचर को बनाते बनाते ना इनके फ्यूचर बन सके ना बच्चों के फ्यूचर बन सके, कहीं के बच्चे चरसी मवाली बन गए, कहीं के बच्चे करप्शन में चले गए,
पाकिस्तान में भी हो रहा है,
मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अब भी आप बचाने की सूरत बढ़ो, देखो ना एक चीज दिख रही है बस रोक लोगे, दिखती ही नहीं है, रोकोगे कैसे, अच्छा वो खुद अपने आप को बाहर नहीं बचा सके, अगर मैं इस वक्त मुझे अगर मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं अपने गुमान और जहन और अपनी सोच के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ कि जिससे मुझे हो सकता है कि कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर सके, अगर मेरे पास कोई ऐसी अम्मार भाई टेक्नोलॉजी होती कि मैं पाकिस्तान के बाहर मौजूद करोड़ों पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लेकर आपको सुना पाता, सारे पाकिस्तानियों का, इन पाकिस्तानी औरतों का, इनके बच्चों के हवाले से जो इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनका इनके कर्जों के हवाले से, इनकी बेरोजगारी के हवाले से, इनकी अखलाकियात के हवाले से, किरदार के हवाले से जो कुछ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर मैं आपको सुना पाता तो शायद हो सकता है कि इन करोड़ों पाकिस्तानी जो दुनिया भर में हैं, करोड़ों पाकिस्तानी दुनिया भर में होते होंगे मेरा गुमान है, ठीक है, इनकी आवाजें सुनकर कम अज कम इस मुल्क में रहने वाला पाकिस्तानी तो शायद ये कहेगा कि अपने को बाहर नहीं जाना चाहिए,
उन पाकिस्तानियों की वो इंटरव्यू सुनने वाला आवाज
जो यहाँ पर है,
जो यहाँ
परेशान है,
जो परेशान है,
बेरोजगार है,
रोए वगैरह नहीं रहेंगे,
नहीं रोऊंगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे इनके ऊपर रोना आएगा, जैसे उनके ऊपर रोना आता ना वैसे मुझे इनके ऊपर रोना आएगा, क्यों कि इन लोगों को पाकिस्तान के बाहर सुबह 6 बजे बसों में बैठा हुआ आप देखोगे,
बेशक
जो नौकरी पर निकल रहे और रात को 8-9 बजे घर जाता हुआ देखोगे बसों में और प्राइवेट ट्रेनों में और गाड़ियों में बैठकर, और ये अपना नाश्ता बनाकर निकला होगा, अपना लंच साथ लेकर निकला होगा अपने हाथों से बनाकर, और रात को आकर अपना खाना तैयार करेगा, अपने कपड़े धोएगा, खुद अपने कपड़े इस्त्री करेगा, अपना बिस्तर खुद सीधा करेगा, अपने जूते खुद पॉलिश करेगा, और ये सब कुछ कर कराकर अब बिस्तर पर थका मांदा सोएगा, और फिर सुबह उठकर 6 बजे इतना सा मुंह लेकर लटका हुआ बस के अंदर, मैंने देखे इनके मुंह ना, हाँ वो जाएगा, और 2 घंटे की ट्रैफिक, 3 घंटे की ट्रैफिक के अंदर बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाता हुआ जाएगा, 2 घंटे पहले घर से निकलेगा, आप तो टाइम पर घर से निकलते हो ना, 2 घंटे पहले घर से निकलेगा, वहां जाकर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा, और पार्किंग में गाड़ी करने के बाद 1 घंटा गाड़ी के अंदर नींद करेगा, फिर जाकर ये जाएगा, फिर जाते जाते 3 घंटे 5 घंटे अपनी जिंदगी के रोजाना के वो ट्रैफिक के अंदर गाड़ी के अंदर गुजारता है। मैं दुनिया के अंदर कई मुल्कों में जाकर देखा हूँ, पिछले दिनों मेरा ही बाबुल मदीना में डे टाइम में डे आवर्स के अंदर पीक टाइम के अंदर मेरा निकलना हुआ था किसी काम से अपनी गाड़ी के अंदर, मैं ड्राइविंग भी की और मैं बैठा भी हुआ था, मेरे साथ एक इस्लामी भाई था, मैंने कहा कि इस टाइम के अंदर मैं दुनिया के नाम लिए मैंने इन मुल्कों में जाऊँ ना तो मुझे सिर्फ आने जाने में 5 घंटे चाहिए, और इस पर बाबुल मदीना जो 2 करोड़ कहूँ 2 करोड़ आबादी का शहर है, और मैं कमर्शियल एरिया में गया था, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं गया था, रेसिडेंशियल एरिया में तो कहीं भी रश नहीं होता, मैं कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल एरिया में गया था और 1 से 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर मैं अपना काम निपटा कर वापस आ गया हूँ। मैं प्राउड कर रहा था, प्राउड कर, मैं अफ्रीकी ममालिक, अरब ममालिक, यूरोपियन ममालिक और इसके अलावा दीगर ममालिक, इवन के फॉरेस्ट ममालिक के अंदर मैं हर जगह की पीक आवर्स की ट्रैफिक को जानता हूँ, वहां के मैनेजमेंट को जानता हूँ, जो वहां का जो अरेंजमेंट, जो तरक्की याफ्ता मुल्क अरेंजमेंट, लेकिन अजीब हाल है, यहाँ 2 करोड़ की आबादी का शहर, 2 करोड़ की आबादी के शहरी कितने दुनिया भर में, बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान का सातवां छठा या सातवां बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी के शहर को दुनिया में कंपेयर करके देखें, फिर करप्शन कंपेयर करें, फिर वहां की बदउनवाने कंपेयर करें, वहां की सहूलियात को कंपेयर करें, आप जिस मुल्क के फर्द है ना और जो आपकी कौम है पाकिस्तानी, अल्लाह ताला की रहमत से ये बहुत अच्छी कौम है,
बेशक
बहुत अच्छी कौम है, यकीन माने, वरना तो ये मतलब के और कोई ऐसा मतलब के शहर का मिस्ट्री देखे, अंदर सब देखे, करप्शन कहां नहीं होता, यहां भी है, इल्म की कमी है, मालूमाती कमी है,
अमीर के बच्चे का मजा होगा उसको,
असल में ये दुनिया भर में सक्सेस है बेटा, यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में प्रॉब्लम है।
हमने तो
अच्छा, दूसरा ये कि आप जिस मुल्क की बात करते हैं ना, आप और हम ऐसे ही हैं कि अगर आपके साथ सलमान भाई कोई अरबपति सेठ का बेटा बैठा हो और आप बैठे हो और आपके वालिद साहब की आमदनी मिसाल के तौर पर महीने के 1 लाख रुपए की है, और जो आपके साथ बैठा हो उसके वालिद साहब की आमदनी महीने की 10 लाख रुपए की है, ठीक है, ये अमीर आदमी है, आप गरीब, और आपके साथ जो बैठे हो ना अमार भाई, इनकी महीने की आमदनी 25,000 रुपए की है, अगर ये आपसे खुद को कंपेयर करेंगे ये दुरुस्त है
नहीं है?
आप इनसे खुद को कंपेयर करेंगे ये दुरुस्त है
नहीं है?
नहीं है। हम जो अपने मुल्क को कंपेयर कर देंगे, ये तकसीम दुनिया भर में है, अमीर मुल्क भी है, गरीब मुल्क भी है, मिडिल क्लास कंट्री भी है, जिस तरह नेशन हम घरों अपने मुल्क में अपने अपने खानदान में देख लें, आपके खानदान के अंदर 10 घर हैं, खाला भी है, मामू भी है, फूफी भी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल है ना, इसी तरह दुनिया के ये 200 मुल्क है ना, इसमें कोई अमीर मुल्क है, कोई गरीब मुल्क है, कोई मिडिल मुल्क है, ठीक है, इस तरह के ममालिक हैं। आप हम अपने मुल्क को कंपेयर करें उन ममालिक से कि जो एक तो इसके बाद आजाद हुए और फिर वहां पर उनकी करेंसी के हवाले से और इनकी दीगर चीजों के हवाले से, तो भी जवाब ये आएगा कि बाद ममालिक हमारे बाद आजाद हुए और वो हमसे ज्यादा तरक्की वाले मुल्क हैं, ठीक है, ये भी मैं मानता हूं, तभी मैं ये तो कहूंगा ना कि यहां पर अवामी तौर पर वो क्लास और बदउनवानी का वो मामला है जिसको दूर करने की जरूरत है।
छोटा सा एक साहब है, मतलब मैं एक जगह पर किसी जगह रहता हूँ, उसी मेरे पड़ोस में एक साहब रहते हैं, मतलब मुझे ये बताएं कि अगर वो बिजली का कुंडा लगाते हैं और उनको पूरी बिजली, मतलब जो बिल उनको आ रहा है वही बिल मुझे आ रहा है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मतलब कोई कुंडा नहीं लगा रहा हूँ, उसी के ऊपर जो मेरी साथ के हैं, मतलब बिजनेस के अंदर हैं, एक बंदा मिस डिक्लेरेशन कर रहा है, मैं मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब जो डिक्लेयर है वही डिक्लेयर कर वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, तो मेरी क्या गलती है?
आज से तो नहीं ना सलमान भाई,
मेरी नहीं, आप मुझे बताएं ना
भाई, आज से तो नहीं, जो आप कह रहे हैं आज से तो नहीं है, मतलब के जो बेईमानी करता है, चोरी करता है, अगर उसे कोई सुकून और राहत नसीब हो जाती है तो डेफिनेट अगर उसने दुनिया में अगर बेमानी या बदअनुमानी करके कोई सुकून और राहत पा भी लिया तो उसके लिए आखरत के लिए क्या, एक मुसलमान को क्या ये सोचने की हाजत नहीं है? आप अगर ईमानदारी के साथ जी रहे हैं और आप तकलीफ में भी जी रहे हैं तो आप ये तो देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ईमानदारी जैसी नेमत दी हुई है यार।
नहीं, आप थोड़ी तो गुंजाइश निकाले ना इमरान भाई, अभी
बेमानी की माजल्ला,
नहीं नहीं अल्लाह ना करे बेमानी की, लेकिन आप ऐसी गुंजाइश निकाले ना कि अगर मेरे हाथ पांव बंद गए मैं अपनी फील्ड तो चेंज नहीं कर सकता ना, आप थोड़ी तो गुंजाइश निकाले ना कि मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ उनको तो यार जान छूटे मेरी यार, इसका मतलब मैं कैसे इनको,
मतलब ये इस तरफ नहीं जाए कि दे रहा हूँ या ना दे रहा हूँ, जो आपको पता है कि यार ये काम मैं बगैर हराम के नहीं कर सकता तो आदमी उस तरह चलाने की कोशिश करे कि जिसे बगैर हराम में मुब्तला हुए कर सकता है। देखिए एक शख्स आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के पास बाजे गाने वगैरह के हवाले से वो हुआ, सवाल हुआ, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि मतलब कि कोई भी मौसीकी अपने माँ के पेट से सीख तो नहीं ना निकलता, ये भी तो हुनर सीखने से आया ना तुम्हें, तुम यही हुनर क्यों सीखा, कोई और हुनर सीख लेते, यानी ये बात समझाई जा रही थी कि अब अगर हमें काम करना ही है, आप माशाल्लाह अट्टे गट्टे या जो भी इस तरह के नौजवान या हमारी नस्लें होती हैं अट्टी गट्टी नौजवान पढ़ी लिखी होती है समझदार होती है, अब वो एक कुर्बानी तो देना, जैसे अब हमारे बुजुर्ग ने क्या फरमाया शफी भाई ने कि मैंने वो लाइन छोड़ दी जिसमें मुझे रिश्वत देनी पड़ती थी और इन्होंने तहिया किया हुआ था कि मैंने रिश्वत नहीं देनी, इन्होंने वो जगह छोड़ी, बज़ाहिर इनको जगह से नफा आना या जो आना ये सब बंद होता ही नजर आया होगा, लेकिन चूंकि अल्लाह पर अगर आप तवक्कुल करोगे तो हदीस पाक में है कि जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे जैसा कि तवक्कुल करने का हक है तो अल्लाह ताला उसे वहां से रिस्क देता है जहां पर उसका गुमान भी नहीं आता, और एक रिवायत में यूं भी आता है कि अल्लाह ताला उसको उस परंदी की तरह रिस्क देता है कि जो अपने घोंसले से भूखा निकलता जरूर है अपने घोंसले में भूखा आता नहीं है। इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए वो गुनाह का दरवाजा बंद किया, अल्लाह ताला ने हो सकता है कि इनके लिए कई अच्छे दरवाजे खोल दिए होंगे, फिर खुशहाली का दरवाजा अलग खोल, देखिए खुशहाली का और सुकून का एक ऐसा दरवाजा जो अल्लाह अपने दस्ते कुदरत अपनी रहमत से खोलता है, वो गरीब पर भी खोल देना उसकी मौज लगे और अमीर पर बंद कर देना तो वो कहीं का ना रहा,
कहीं कहीं,
ठीक है ना, इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है।
सर ये तो रियासत का काम है ना कि इस तरीके के सारी चीजें रोकी जाए,
ये पिछले सिलसिले में भी ये हुआ था, थोड़ा सा अमर भाई भी इसमें जज्बाती हुए थे कि यूं हो रहा है यूं हो रहा है, आपने भी थोड़ा इस मामले में पीछे से इसने कलाम किया था। देखिए वी आर नॉन पॉलिटिकल बॉडी, हम लोग गैर सियासी लोग हैं और हम अफराद की इस्लाह पर बहुत यकीन रखते हैं, अगर हम अफराद की इस्लाह की तरफ जाएं जैसा दावत इस्लामी बढ़ रही है, अफराद में हर तबका आ जाता है, हर तबका आ जाता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, वो रियासती मामलात में हो, मुल्की मामलात में हो, निजी मामलात में, इज्तिमाई मामलात में हो, अगर आप अपनी नेकी की दावत लेकर माशरे के हर फर्द तक पहुंच जाते हैं और उसके दिल में खौफ खुदा का वो जज्बा जो मुसलमान के दिल में होना चाहिए वो उजागर करने में हम कामयाब हो जाते हैं, इश्क रसूल की शमा की वो रोशनी जो एक मुसलमान के दिल में वो रोशनी होनी चाहिए, खौफ खुदा की लगाम और इश्क रसूल की रोशनी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉपर रास्ते पर चला देती हैं। अगर अफराद ही की इस्लाह हो जाए ना, अफराद की इस्लाह हो जाए और तो क्या होगा कि एक रिश्वत लेने वाला वो रिश्वत से रुक जाएगा, करप्शन करने वाला करप्शन से रुकेगा, खौफे खुदा रोक सकता है। कल माँ बाप बच्चों को रोकते थे, रुको रुको, मैं चंद दिनों पहले गौर कर रहा था, कोई बयान भी ऐसा हो रहा था, तो माँ बाप रोकते थे, आज माँ बाप बच्चों को कहाँ से रोकेंगे, चलो घर में नेट नहीं दिया, मोबाइल में नेट मौजूद है, सिम में नेट मौजूद है, ओके, अब बच्चा कमरे के अंदर सोने भी जाएगा कि नहीं जाएगा कि माँ बाप हाथ बांध कर कमरे, जब तक ये सोएगा नहीं खराटे लेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने हजार बच्चों पर पाबंदी आपने लगा दी, लेकिन अब सिम के अंदर जो नेट है उस नेट के अंदर से जो खराबी पैदा हो सकती है इससे अपनी औलाद को आप कैसे रोकोगे, दिन रात की चौकीदारी तो आप करने से रहे औलाद की, सिवाय इसके कि आप अपने बच्चे के दिल में खौफे खुदा पैदा करते हैं कि मेरा बच्चा अल्लाह से डरने वाला बन जाए, कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, माँ बाप हर वक्त नहीं देख सकते, टीचर हर वक्त नहीं देख सकता, सुपरवाइजर हर वक्त नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह तो हर हाल में देख रहा है, ठीक है, वो समी भी है, वो बसीर भी है। तो अगर हम इसी तरह मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक शख्स है जिसके दिल में खौफे खुदा पैदा करवा दिया आपने,
अब वो किस हाथ से रिश्वत लेगा यार।
सब ऐसे तो वो लोग हैं जो जिनका मजहब ही सहन हो वो करेंगे, बाकी तो मतलब सब अपने हिसाब
से। हमने तो माशाल्लाह, हमने तो माशाल्लाह बड़े मतलब देखे स्पोर्ट्स पर्सन आए अच्छे मतलब माहौल में आ गए, कोई सियासतदान मतलब कोई को आपको आया नहीं है मतलब?
मतलब ये है कि कोई सियासतदान हो या फला दान हो या और दान हो या फला दान हो, मसला ये है कि आपका काम क्या है सलमान भाई? नेकी की दावत,
नेकी दावत
देने। हम ये सोचे कि अभी तक नेकी की दावत देने में हम इतने कामयाब नहीं हुए, अब नेकी की दावत दें कुरान के साथ, एक जले हुए दिल के साथ, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है,
अच्छा रखती
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अगर ये हम एक अपने एक दर्द के साथ कुरान के साथ सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे कुछ भी नहीं होता, ये ना सोचे कुछ भी नहीं होगा। हमने मैंने तो अभी तक दावत इस्लामी में आने के बाद हाजी शाहिद से आज ही मेरी वो है कुछ बातों मुशावरत हो रही थी, कुछ नहीं हो सकता ना, ये तो सच्ची बात है, कुछ करने पर उभरता है। आप कह दो ना मुझे कि इमरान ये नहीं हो सकता, तो शायद आपका ये जुमला मुझे उसके करने पर उभारेगा कि नहीं यार क्यों नहीं हो सकता, यार क्यों नहीं हो सकता, करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। मतलब एक चीज शरईन महाल होती है, नामुमकिन होती है, हो ही नहीं सकती, उस पर तो कोई गाती कलाम ही नहीं है। अब एक चीज एक बार आपसे नहीं हो सकती जरूरी मुझसे भी नहीं हो सकती, एक चीज मुझसे नहीं हो जरूरी इनसे नहीं हो सकती, फिर ताकत की कमी, अजम की कमी, लाइन ऑफ डायरेक्शन की कमी, इस्तेकामत की कमी, बहुत सारी कमियां हैं। मतलब देखे ये बताइए, करोड़ों आबादी का ये हमारा मुल्क है, करोड़ों लोग, 20 करोड़ 22 करोड़ 18 करोड़ की आबादी कहलाती है, ठीक है अमर भाई। हम कहते हैं कि अच्छे लोग नॉर्मल लोग बहुत बुरे नहीं है, इसमें कुछ नेक भी हैं और कुछ नॉर्मल भी हैं, अच्छाई को नेकी को पसंद करते हैं, लाखों होंगे
बुरे भी है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे
नहीं। मैंने जो पूछा है सर उसका जवाब दे दिया,
8-10%
लाखों की तादाद में तो होंगे भाई, जो मुल्तान के इज्तिमा में जमा होते थे उनको तो अब बोलेंगे ना इनकी को मजहबी और मदनी सोच होगी, जो दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पाकिस्तान के इतने शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पे जो इज्तिमा होते हैं उनमें जमा होते हैं, 550 इज्तिमा होते, तो उनमें तो आप कहेंगे कि कोई नेक होंगे। अच्छा जो मदनी चैनल ही देखते हैं, जब कई मरतबा मदनी चैनल देखने को पसंद करते हैं कि यार ये देखो इसमें कोई दीन की बातें होंगी, मजहब की बातें होंगी, या जो रमजान मुबारक में इफ्तार के बाद कहीं और जाने के बजाय कहते होंगे यार दावत इस्लाम वालों के साथ बैठो या दुआ करते हैं, इनकी को तो मजहबी अच्छी या पॉजिटिव सोच होगी, ऐसे लोग तो होंगे, ये लाखों नहीं शायद अगर आप ढूंढेंगे तो करोड़ों भी मिल जाएंगे, एक कुछ करोड़ वरोड़ का फिगर शायद उसमें भी लग जाएगा। ठीक है
भाई, हम हर नए इस्लामी भाइयों को देखते हैं जो पहले नहीं होते
आए थे, मतलब मैं जिस तरफ लाना चाह रहा हूँ आपको मेरे मदनी चैनल के नाजरिए।
भाई साहब एक बात अर्ज करें, जैसे ये कह रहे हैं कि सियासतदान नहीं आते, जरूरी तो नहीं कि जाहिरी तौर पे वहाँ दिल में तो हमें
जरूरी नहीं होता कि आदमी गेटअप के साथ बताने की मेरा बात पूरी हो जाए, मार भाई मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये लाखों लोग, ये जो हम कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता, अगर हम एक सिलसिला कर रहे हैं 14 अगस्त को, हो सकता है कि इस वक्त देखने वाले भी इसको जो देख रहे हो और यहाँ वहाँ नहीं जा रहे, राइट लेफ्ट नहीं जा रहे, किसी गुनाह भरे चैनल की तरफ नहीं जा रहे, गुनाह भरे पोरंग की तरफ नहीं जा रहे, और टिके हुए इस सिर्फ आपको देखने के लिए मदनी चैनल में, 14 अगस्त को हमने ये देखना है जो ये दावत इस्लामी वाले लेकर आए हैं, जो ये देख रहे हैं इनके बारे में कोई तो आप कहेंगे कि इनमें 1% ऐसी होगी जो वाकई नेकी के रास्ते पर चलने वाली होगी, कुछ नेकी को पसंद करने वाली होगी, नेकी को प्रमोट करने का माइंड रखती होगी और नेक लोगों को भी पसंद करती होगी, इस तरह की चीजें तो होती होंगी ना। अगर ये तबका को हम उभारने में कामयाब हो जाएं कि दो कदम और आगे आ जाओ यार, इस्लाह उम्मत के लिए आगे आ जाओ, ठीक है अगर आप रिश्वत देते थे तो आज रुक जाओ, अगर सूद खाते थे तो बच जाओ। ये करते बच जाओ, अगर ये सब होना शुरू हो जाए तो आप ये देखिए कि अगर ये तादाद परसेंटेज बढ़ती है तो वो लोग जिसका आप कह रहे हैं कि नहीं करप्ट लोग की एक तादाद है, करप्शन करने वालों की एक तादाद है, ठीक है ना, और मतलब वो ब्लैक शिप जिसको आप कहते हैं ना, इनकी भी एक तादाद है, ठीक है इसको हम बाकायदा हाईलाइट करते हैं, एक तादाद है, हैं काली भेड़े हैं, इनकी एक तादाद है, ये जो है अगर ये तबका आ जाए थोड़ा मैदान अमल में आ जाए, जिनको उभारना हमारे लिए नामुमकिन नहीं है अगर हम सब कुछ मिलकर कोशिश करें, तो क्या ये उनको दुरुस्त करने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते?
अब आप मेरी बात,
मायूस हो जाते हैं ना हमारे लोग, कुछ नहीं हो सकता,
कुछ नहीं हो सकता
अमर भाई, ये दुरुस्त नहीं है।
यानी इस्लामी को बने कितना अरसा हुआ?
तकरीबन कह सकते हैं 36-37 साल
36-37 साल में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ तो नहीं आया,
दावत पाकिस्तान में
बंगाली की तरफ ही
है। तो रोजाना की एक डेढ़ मस्जिद हम बना रहे हैं, अगर ये भी बेहतरी नहीं है।
दावत इस्लामी
इज अ ग्रुप ऑफ पीपल,
बिल्कुल
अफरादी कुव्वत का नाम एक दावत इस्लामी है ना, जिसका तो अफराद है, मस्जिद जिन्ना तो नहीं ना बना रहे,
लेकिन परसेंटेज निकालें तो फिर भी कम है। अगर आप बुराई और अच्छाई की परसेंटेज निकालें तो कम है। अब आप उस तरफ आ जाएं, क्योंकि वो पॉइंट पीछे रह जाएगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 रमजान को जो आपने बनाया था एक मजहब के नाम पर, आजादी का नारा लगाया था आपने, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा आपने लगाया था, और फिर रहन सहन कल्चर का आपने नाम दिया था कि हमारे उनके गैरों के कल्चर मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना, हमारा रहन सहन उनसे मुख्तलिफ है, तो उनका ही रहन सहन आज इसी माशरे में पाया जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट किया हम लोगों ने। देखिए हमें बुराई की तरफ लाया कौन, हमें ये बुराई की तरफ कोई तीसरी कुव्वत नहीं लाई, इसी मुल्क के रहने वाले लाए। आप जहां तक दावत इस्लामी की बात कर रहे हैं, दावत इस्लामी 36 साल से जो काम कर रही है उसकी परसेंटेज में और इन बुराइयों की परसेंटेज में जिसको आप टीवी पर बैठ के एड्रेस कर रहे होते हैं इसी मुल्क के लोगों से, इन्हीं पाकिस्तानियों से, तो आप बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ कि परसेंटेज किसकी ज्यादा है कि आपको ये कहने पर मजबूर कर रही है कि ये काम मत करो, ये बुराई मत करो। आप इसी मुल्क में रहने वाले लोगों को ये एड्रेस करते हैं टीवी पर बैठ के, तो आप खुद बता दें, फैसला आप खुद करें, क्या हमारा कल्चर गैरों से डिफरेंट है?
हम एक ऐसे महले में रह रहे हैं कि जहां पर कई परनाले बने हुए हैं और इतने सारे परनालों से गंदगी गिर रही है, ठीक है, अगर इसको साफ करने वाले नहीं होंगे अम्मार भाई तो ये घर गली का हाल क्या होगा। जिस मीडिया पर बैठकर हम दुरुस्त रास्ता बता रहे होते हैं इसी मीडिया पर बहुत सारे जगहों से गंदगी गिर रही होती है। अब सफाई करने वाले कम और गंदगी करने वाले ज्यादा होंगे तो फिर हमें आपका ये स्टेटमेंट सुनना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन इन गंदगी को दूर करने वालों में अगर दो हाथ आपके शामिल हो जाएं आज आप नियत कह लेंगे आपके घर के परनाले से इस गली के अंदर गंदगी नहीं गिरेगी, आप भी नियत करें तो सफाई करने वाले हाथ बढ़ जाएं और गंदगी गिराने वाले परनाले कम हो जाएं। तो आपको नहीं लगता कि ये इलाका, ये महल्ला, ये मुल्क, ये मुख्तलिफ जो अखलाकी खराबियां या मजहबी खराबियां हैं इनसे पाक हो सकता है?
ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, देखिए आपकी भी ख्वाहिश है जो आपकी जबान पर भी
ख्वाहिश है, ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान।
मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो कह रहे हैं ना कि आप स्टेप लें, मैंने स्टेप लिया। जब मैं क्लास 9 में था मैं अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए क्यू में खड़ा था, लेकिन मुझे गार्ड मुझे आगे क्यू में खड़े हुए लड़के ने कह दिया कि 20 रुपए हैं तेरे पास। मैंने क्यों बोला, गार्ड को 20 रुपए दे दे फॉर्म जमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो मुझे तो बचपन ही से ये ट्रेनिंग दी गई कि कुछ दे और कुछ ले। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 रुपए मैं दे रहा था।
कह रहे जैसे हम लोग अभी किसी इदारे में कुछ बनाने के लिए गए ही नहीं।
तो आपने उसको एक्सेप्ट,
मैं तो अपनी पूरी फैमिली लेकर शनाधिकार बनाने के लिए गया था कि हमको ऑफर नहीं हुई होंगी, हमने तो 1 रुपया नहीं दिया।
आपके लिए तो दरवाजे खुल गए होंगे?
नहीं, दरवाजे नहीं खुले थे, हम लोग दरवाजा खोल कर गए थे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, जब मेरा लाइसेंस एक्सपायर हुआ, मैं बाकायदा लाइसेंस में ट्रक, मेरा पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी मैं खुद गया, इंस्पेक्टर से मैंने खुद बात की और एक प्रोसीजर से गुजर के मैंने अपना जो भी मतलब उस पर मैं जो प्रोसीजर जो बना वो ले लिया। उसमें माहौल में शायद था, मगर हम था या नहीं था इतना याद नहीं आ रहा, मगर लाइसेंस मेरा बना बिगैर रिश्वत के बना, अल्लाह का शुक्र। अभी मैं लाइसेंस मेरा मतलब मेरा पर्स चोरी हो गया था, ठीक है, ये भी बता दो।
आपका पर्स चोरी हो गया था?
मेरा पर्स चोरी हुआ था, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, नहीं मजाक हुआ था ना ये।
क्या बात है।
तो मेरा पर्स चोरी हो गया किसी तरह से, तो उसमें मेरा लाइसेंस वगैरह भी
यही हुआ था, इसी पाकिस्तान में,
इसी पाकिस्तान में बाबुल मदीना कराची में हुआ था। मुझे फिर भी मेरे मुल्क से मोहब्बत है कि इस मुल्क में मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, इस मुल्क में मेरा पर्स चोरी हुआ है, इस मुल्क में और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये नीयत है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये इंशाल्लाह किसी और के साथ नहीं होगा। सुने मेरी बात, मैं यह कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जाना था ना,
तो बाकायदा मैं गया, मुझे भी ऑफर हुए थे, मैं इस बैंक में गया, टिकट ली, टिकट लेने के बाद खुद टिकट ली, पैसे दिए, टिकट लेने के बाद फॉर्म लिया, फॉर्म लेके ऊपर टिकट लगाए, जाकर मैंने अपना फॉर्म जमा किया, डुप्लीकेट निकलवाया, ये निकलवाया, जो कुछ प्रोसीजर था किया और अपना लाइसेंस लिया, वापस आ गया। सिक्योरिटी इश्यूज पर इक्का दुक्का फैसिलिटीज का हो जाना वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रोसीजर किया, कोई रिश्वत नहीं ली, ऐसा नहीं कि घर बैठे, अगर मैं चाहता तो घर बैठे हो सकता था, बहुत कुछ हो जाता घर बैठे, जब जब अंधों को लाइसेंस मिलने के वाकयात मिलते हैं तो अपने को घर बैठे क्यों ना मिलता, ठीक है। आप बोले कि तुमने अंधों का लाइसेंस एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कुछ है ना, लेकिन फिर भी इससे बाहर दुनिया में इससे ज्यादा होता है, मुर्दों को भी लाइसेंस इश्यू हो जाता होगा, ठीक है, या तो मैंने अंधों की बात की है, ठीक है। मैं एक मुल्क में बैठा था तो उन्होंने हमारे मुल्क के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए, मैं क्यों नेगेटिव कमेंट्स करता हूँ, मेरा 10 बजे तक मार्केट खुलती है, तुम 10 बजे तक काम करके दिखा दो, मेरे यहाँ फैमिली को लेकर लोग घूमते हैं, तुम 5 बजे के बाद अपनी फैमिली को लेकर दिखा दो, तुम हमारे घर के बच्चे गलियों में यूं घूमते खेलते कूदते हैं, ठीक है। किडनैपिंग, यहाँ किडनैपिंग की माफिया यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो दुनिया में किडनैपिंग की माफिया घूम रही होती है। तो आपने करप्शन को दुनिया में शायद देखा ही नहीं है कि दुनिया में करप्शन कितना, असल में बदअनवानी, करप्शन, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, यहाँ तो फिर भी आपको बहुत बचत मिलेगी। अमर भाई, जिन मुल्कों का तस्वुर में दुनिया ही की जिंदगी सब कुछ है, वहां वो लोग हैं कितने जिनको आखिरत की जिंदगी का कोई तस्वुर होगा, वहां तो करप्शन और बदअनवानी ज्यादा होगी, बादों का दिखने को नजर आता है कि यार क्या कुछ है, अंदर में देखे तो बहुत खराबियां और बहुत गंदगियां छुपी हुई होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं औरतों के साथ एब्यूजमेंट, वुमेन एब्यूजमेंट, और वुमेन के साथ औरतों के साथ तलबी होती है, बाहर जिन मुल्कों में आप नारे लगाते हैं कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पर वुमेन एब्यूजमेंट की परसेंटेज हमारे मुल्क से बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ काइंड ऑफ एब्यूजमेंट जो है ना वो डिफरेंट है, वहां पर डिफरेंट है, काइंड ऑफ एब्यूजमेंट में फर्क है, तशद्दुद और इस तरह की चीजें होती हैं बहुत सारी, वहां फर्क है, यहाँ फर्क है, यहाँ पर जो अच्छा, फिर वहां पर कई मुल्क ऐसे जिनमें कुछ होता है तो उन मुल्क के अंदर उन्हीं के लोग मीडिया के जरिए उन चीजों को दबाते हैं, हमारे यहाँ उभारते हैं, क्यों, हम देखने के शौकीन है, देखने वाले बढ़ते तो इनकी कमर्शियल बढ़ती है,
जो कुछ देख
हम खराब देखे
मसला ये है वो दिखाया जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप दूसरे मुल्क के मिसाल देखे ना, मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं
इसकी एग्जांपल नहीं दे सकता, बड़े बड़े वाकयात होते हैं, बड़ी बड़ी आगे लग जाती हैं, बड़ी बड़ी अम्बात हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन वहां पर रोक दबा दिया जाता है, रोक लिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, इश्यूज नहीं बनाया जाता। अगर इश्यूज बने तो रोजाना के कई वाक्य धर्म उससे निकलेंगे। यार जिस घर में 4 आदमी रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ होता है, जिस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग रहते हो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होते होंगे। आप अखबार पढ़ना बंद कर दो, न्यूज देखना बंद कर, सब बंद कर दो, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपके साथ रोजाना क्या होता है। आप रोजाना आते जाते हैं क्या, रोजाना आपके साथ कुछ हो रहा होता है?
नहीं,
मतलब कोई साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा किसी के साथ ना कुछ गवर वाकया हो जाता है, तो दुनिया में हर कईयों के साथ होता रहता है, तो क्या वो सारे के सारे अपने मूल से क्या वो कंप्लेन करने के लिए बैठ जाते हैं? मैं नहीं कहता कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं कब कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे करोड़ों पाकिस्तानी इन प्रॉब्लम्स को रोते हैं। अगर सारे के सारे मिलकर प्रॉब्लम दूर करने के लिए किरदार अदा करें, नहीं देनी रिश्वत, नहीं देनी, लेने वाले कितने,
ये
1000, देने वाले कितने, लाखों रुक जाएं, 1000 क्या करेंगे, इनके खिलाफ क्या सोशल बायकॉट करेंगे ये लोग? सूदी इदारे कितने, सैकड़ों, लेने वाले लाखों, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, ये इनको उभारती है। हम भी तो मतलब है, देखो ना यार, निकल ही पड़ते ना पाकिस्तान के बाहर, जो पाकिस्तानी है वो भी अपने किरदार की वजह से प्रॉब्लम है, मतलब किरदार की वजह से प्रॉब्लम है। कितनी शर्मिंदगी की बात जगत होती है, तो वो कौन सा मतलब अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। बाद ममालिक के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं ना, मिसाल के तौर पर 10% पाकिस्तानी किसी मुल्क के अंदर हैं, जेलों में जितने कैदी हैं उन कैदियों का 20% पाकिस्तानी मिलेगा।
मैं यही आने टॉपिक,
ठीक है, तो ये नेचर प्रॉब्लम हुई ना कि कंट्री प्रॉब्लम हुई। आप मतलब इस कंट्री की गली पर, अगर इस मुल्क की गली के अंदर कीचड़ है तो इसके गटर की सफाई के अंदर कमजोरी थी तो कीचड़ है ना। तो जिसने बदअनवानी की है, हम उस बदअनवानी करने वाले के लिए कुछ कलाम करें, ना कि ये देखें, ये जुमला बहुत अजीब है, चोट लगती है, तकलीफ होती है कि पाकिस्तान ऐसा हुआ। मुल्क कैसे खराब हो गया यार? मुल्क में रहने वाले फर्द ने करप्शन किया, ना कि मुल्क ने करप्शन किया यार। इतने फर्क को समझे ना यार, एक कंपनी है उसका एसी खराब हो गया तो ये एसी के यूनिट खराब है, ना कि वो कंपनी खराब है यार।
उस कंपनी के कई यूनिट है जो सही काम कर रहे होते हैं।
भाई साहब जैसे एक मशीन है ना, मशीन प्रॉपर चल रही है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो सही चलती रहेगी। अगर उसकी देखभाल छोड़ दी तो कभी कुछ टूटेगा, कभी कुछ निकलेगा,
तो
कभी क्या खराब होगा।
कि आपने उस मशीन की देखभाल नहीं की, आपने उन लोगों की देखभाल नहीं की।
हम अपने आप को सही करेंगे ना।
मैं यही कह रहा हूँ कि असल में देखभाल सही होने का नाम है, नेकी की दावत देना बुराई से मना करना। नंबर पर एक मुसलमान को ये बात समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। अमरुम बिल मारूफ व नहयुम अनिल मुनकर, जो करप्शन आप कहेंगे, इन करप्शन का इलाज नेकी की दावत देना बुराई से मना करना है। तो अगर ये चीज आ जाए, यानी माशरे के वो अफराद के जो बुराई देखकर इसको खत्म करने की ताकत रखते हैं, अगर वो बुराई को नहीं खत्म करेंगे तो उनको भी अजाब में मुब्तला किया जाता है, उनके लिए भी सजाएं हैं। ये इस्लाम और दीन ही का तो मैसेज है। अब ये बताइए कि कितने लोग बुराई खत्म कर सकते हैं। अच्छा, आप सोसाइटी की बात करते हैं, मैं कहता हूं घर की बात करो, घर से सोसाइटी बने, फर्द से घर बनेगा, घर से सोसाइटी बनेगी। हम घर की बात कर रहे हैं, अगर माशरे में रहने वाला हर फर्द अपने घर की इस्लाह कर ले, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो तुम्हारा घर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी घर तो बन जाए। भाई आप अपने, आप पूरे मुल्क पर तबसरा करने के लिए आते हैं, आप अपने घर को तो इस्लामी नजरिया के सांचे में डालें। आपको कौन गनपॉइंट पे कहता है कि आप गैर इस्लामी तरीके का अपने घर में वजह करें? किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाकर दिया है आपको? किसी इलाके के थाने वाले ने आपको पाबंद किया है कि अपने घर में शराब नहीं पियोगे तो तुमको मारेंगे, अपने घर में जुआ नहीं खेलोगे तो तुमको मारेंगे, अपने घर में फिल्में ड्रामे नहीं देखोगे तो तुम पर इतनी एफ आई आर कट जाएगी, अगर बीवी पर जुम नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफ आई आर कटेगी? क्या किसी ने आकर कहा है?
आप असबाब तो मुहैया कर रहे हैं ना,
असबाब हमारे
हैं, आप पाबंदी लगा दें तो मैं ऑटोमेटिक नहीं करूंगा।
भाई साहब, भाई साहब एक बात, आप फारस भी गए होंगे और यूरोप ममालिक और अरब ममालिक यहाँ पर भी गए ना, वहाँ देखा होगा आपने मशीनें लगी हुई हैं कोल्ड ड्रिंक की, भी हर चीज की, कॉफी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पैसे डालें, बटन दबाएं, वो बाहर आ जाएगी। हमारे लगाएं कितने दिन चलेंगे? इसलिए कि हम खुद उस,
अरे
अमलदारी नहीं है हमारी।
ये बोलेंगे कि देखो उधर मशीनें लगी, कोई लेकर चला जाता है, इतनी चोरियां होती हैं, रॉबरी
वहां पर भी,
रॉबरी और मतलब के इस तरह औरतों के साथ जो मतलब बद अखलाकी है,
हमारे
बच्चों के साथ बद
अखलाकी, उन्होंने अपनी मीडिया को रिजर्व कर दिया।
मतलब मैं आपको अगर मैं कह रहा, मैं चैनल पर नहीं बोल सकता, ये ऑफ एयर हो जाए फिर मैं बताऊंगा आपको, कैमरा बंद हो जाए फिर बताऊंगा कि बाहर क्या क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में अभी इसका कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं।
यकीन मानो अमर भाई, कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ बेरोजगारी आप बोल रहे हो, मैं दुनिया में देख रहा हूँ बेरोजगारी हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा यहाँ अब भी बेरोजगार आदमी कटकुट कर कर ना अपने घर का अपना खर्चा चला लेगा,
चला ले बेशक,
फिर भी हमारा मुल्क और हमारा शहर सस्ता है दुनिया में। मतलब के एक एक बन लेने जाओ ना तो चमड़े उतर जाते हैं, एक चाय पीने जाओ तो चमड़े उतर जाते हैं, ये है। अच्छा, रही बात जैसे इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, तो जब बच्चा बड़ा होता है ना सलमान भाई, माँ बाप की बोली नहीं बोलता, गवर्नमेंट की बोली बोलता है, फिर जिसका खाना उसका गाना, और वो गवर्नमेंट माँ बाप को मुलाजिम बना देती है और अपने उनके बच्चों को आका बना देती है, और फिर जब वो बच्चे माँ बाप बनते हैं ना तो इनके बच्चों को आका बना देती है, इनके माँ बाप को गुलाम बना देती है, और जिन्होंने गवर्नमेंट के पैसों पर अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है ना वो आज रो रहे होते हैं, उनका रोता हुआ हम मुंह देखकर हम आए हैं।
पानी मुहैया कर दे, गैस मुहैया कर दे, एजुकेशन दे दे, हेल्थ दे दे, ये तो मतलब एक कॉमन बंदे का ह्यूमन राइट है।
रोजगार दे दे, रोजगार
दे दे,
आप रोजगार
दे दे,
अमर सब मिलेगा। मेरी बात को प्लीज थोड़ा सीरियस लें, आपको सब मिलेगा, अमल दुरुस्त हो जाए।
मैं इस बात से एग्री करता हूँ, सब मिलेगा, अमली कदम आपने भी उठाना है,
ठीक है, अमल दुरुस्त हो जाए। एक खलीफा से उसकी कौम ने कहा, मैंने किताब में पढ़ा था, कि तुम हमारे साथ वो सुलूक क्यों नहीं करते जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम अपनी कौम के रियाय के साथ करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम उस वक्त वाले लोगों जैसे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में हुक्मरानों के दिल हैं, और रियाय के जैसे अमल होते ना अल्लाह हुक्मरानों के दिल उसी तरह कर देता है, और उन पर फिर ऐसे हाकिम मुसलत करता है। आप हदीसें पढ़ लें और आप बुजुर्गों का अकवाल पढ़ लें। बात यह है कि हमारे अपने आमाल अच्छे नहीं है। अब जैसे कि हमारी कौम खुद अय्याशी चाहती हो, जिस कौम को खुद मतलब बेपर्दगी और बेहयाई और फाशी से इतनी मोहब्बत हो कि वो मतलब कि ये बात करने वाले को भी पसंद ना करे कि यार ये हमको रोकने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, हमने भी फोकस किया है, मतलब तो जो चीजें आप नहीं कह पाते या मैं नहीं कह पाता या हम अपनी किसी भी हिकमत अमली के तहत नहीं कह पाते, उन चीजों को हम भी फील करते हैं। लेकिन एक हल की तरफ तो आना है ना, حل نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا احقاق حق ہے, ہر طبقے میں جا کر کرنا ہے, لیکن ہر ایک کا ایک اپنا وے ہے, ایک رائٹ, ایک باؤنڈری ہے. آپ اپنی باؤنڈری میں لے کر کریں گے نا, اور آپ سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اسی کا نا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا, جو تم جس چیز کے تم مکلف تھے. ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم وہ کام کریں, اپنے اخلاقی ذمہ داری پوری کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, اور جو تکلیفیں ہمارے مقدر میں اسے صبر کریں. لیکن اپنے وطن عزیز کے بارے میں نگیٹو مارکنگ کے ساتھ چلنا اور صرف یہ کہتے رہنا کہ یوں ہے آزادی کیوں ہے, یہ کیوں ہو گئی, یوں کیوں ہو گئی, یہ تصور درست نہیں ہے. سگنل دنیا بھر میں, ہمارے ملک میں بھی ہے یار.
ہمیں پرابلم ہے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں تو, اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے تو ہم اس کو پھر بھی پیار سے بات کریں. اگر کسی کو تکلیف ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا, بات ختم.
نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف تو ٹیکس نہیں دے رہا, اس کی ٹیکس نہ دینے سے جو قوم کو تکلیف ہے
وہ تو اس کو خود تکلیف میں مبتلا ہے نا.
نہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. اگر آپ تکلیف میں ہیں تو کیا مجھے بھی تکلیف میں ڈال دیں گے آپ؟ بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ مطلب کہ یہ ہمارے اسباق یہ ہیں, اسلام و دین کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو راحت فراہم کرو. ہمیں چوریوں کی اجازت تو نہیں ملے گی. اگر کوئی بولے گا یار لائٹ دیتے ہی نہیں ہے, چلو کنڈا لگا لو, تو کنڈا لگانا چوری تو ہے ہی نا, ناجائز تو ہے ہی نا.
اس کو غریب کے لیے لوڈ شیڈنگ ہے, امیر کے لیے نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو لوڈ شیڈنگ, اس کو لوگوں میں لوڈ شیڈنگ وہاں ہے جہاں پر چوری کی لائٹ دی جا رہی ہے.
جی
زیادہ تر لوڈ شیڈنگ وہاں ہے.
کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, لیکن ایک کے ساتھ دوسرے کا کس طرح ہے؟
جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے اور وہ برائی کو ختم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, پھر بھی وہ برائی کو ختم نہیں کرے بلکہ برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں, بروں کے ساتھ بیٹھک بھی ان کی جاری ہے, تو ان کے حال بھی انہی جیسے ہو جائیں گے, ان کے دل بھی انہی جیسے ہو جائیں گے, اور وہ بھی بہت ساری چیزیں مبتلا کر دیے جائیں گے. یہ ایک سائیکل ہے. ہم اس سائیکل کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہمارا ملک دنیا میں ایک بہت ہی نمایاں ملک بنے گا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج جیسے 14 اگست کو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, تو آج آپ سگنل پر کھڑے ہو جائیں. یہ کیوں اکیلے کھڑے ہونے کا سوچ رہے ہیں کہ میں 2 بجے رات کو اکیلا کھڑا رہوں گا, کوئی لوٹ کر چلا جائے گا. آپ کہیں گے کوئی لوٹ کر چلا جائے گا تو لوٹ مار بھی, کرپشن جو ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں بے روزگاری کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب مطلب کہ لاکھوں لوگ فارغ ہونے کے بعد نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے چلے ہوئے ہیں. اب نوکریاں ہر ایک کو پوری دنیا میں نہیں ملتی جاب. اب چاہیے یہ تھا نوجوان کہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے. آپ بولو گے چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ ہوتے, ایمانداری نہیں ہمارے لوگوں میں. ابھی ایمانداری کا نہ ہونا یہ کیا آزادی سے متعلق ہے؟ یہ جب ایمانداری تھی نہیں تو آزادی کیا کیا فائدہ ہوا؟ آزادی ہونا کچھ اور شے تھی, ایمانداری ہونا کچھ اور شے ہے. ایمانداری ہو اور کسی ملک میں آپ ایمانداری کو اپنے نبھا نہ سکے, کر نہ سکے, وہ الگ ہے. یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں نا. اگر ایماندار آدمی ہو تو اس کو انویسٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہے. یہاں تو انویسٹمنٹ ملتا ہے تو وہ کھا کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے گھر کے خرچوں میں لگا دیتا ہے, اس کو حساب میں ڈنڈی مار دیتا ہے. تو اس طرح اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پر اگر چلیں, یعنی اگر کوئی تاجر, کوئی بزنس مین, وہ 10-20 کروڑ روپے کہیں ادارے میں رکھوا کر ماذا اللہ سود کھانا چاہتا ہے, اگر وہ سود کھانے کے بجائے یہی 10-20 کروڑ روپے نوجوانوں میں روزگار کے طور پہ انویسٹمنٹ کرے, ان کا بزنس پارٹنر بنائے, ان کو اپنا کاروبار پارٹنر بنائے, اس سے زیادہ آمدنی بھی آئے گی, انڈسٹری کھلے گی, بزنس ہوگا, بے روزگاری ختم ہوگی. مگر وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر, اس کو پتا ہے کہ یہاں 10-20 کروڑ روپے جو میں رکھوں گا نا یہ مجھے واپس مل جائیں گے, جبکہ سود حرام ہی رہے گا. یہ بتا دوں سود حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور مطلب کہ اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن ہمارے اگر ایمانداری کا تصور آ جائے نا, دیانت داری کا تصور آ جائے, تو انویسٹر جو پیسہ جس کے پاس ہے, مطلب سرمایہ دار طبقہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کی میں تو دعویٰ دے رہا ہوں. بھلے آپ میرے نوجوان چھوٹا موٹا کام کریں, آپ مطلب کہ چھوٹی موٹی دکان کھول لیں, میں کہتا ہوں عام سی دکان لے کے بن کباب کا کام کریں, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, بن کباب برگر بیچیں ایک قسم کا, کھانے پینے کی چیز کا کام کریں, چھوٹی موٹی کوئی بھی چیز کھول لیجئے, کاروبار کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت دے گا, اور ایمانداری کے ساتھ چلے تو یہ کرپشن جو ہے نا, یہ کرپشن کی ایک وجہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری مطلب یہ کہ یہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. جہاں پر بے روزگاری کم ہے نا, لوٹ مار وہاں بھی ہے, لوٹ مار وہاں بھی ہے, لوٹا وہاں بھی جاتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں عمار بھائی اور مطلب آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ہر علاقے میں لوٹ مار ہے؟ نہیں ہے, مخصوص علاقے ہیں. اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, بڑی سے بڑی کنٹری کا آپ میرے سامنے نام لے لو, چند ایک کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا نکال دیں گے, تقریباً ممالک کے اندر مختلف ایریاز ہیں
जेल में आदमी बचकर वापस नहीं आता, ना औरत बचकर आती है, ना पैसे वाला बचकर आता है, ना पर्स बचकर आता है, होते हैं। तो ये तो इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि खराबी भी है ना, कमजोरी भी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि इसकी खराबियों को दूर करने में अपना किरदार अदा करो, ना कि इसके अंदर खराबियां पैदा करो। ठीक है, कल से हमारे जितने भी 14 अगस्त को ये सिलसिला देखने वाले जितने भी आशिकान रसूल हैं, नियत करें कचरा नहीं फेंकेंगे भाई।
इंशाल्लाह
कचरा कौन फेंकता है भाई? रियासत ने कहा था कचरा फेंकोगे भाई वरना तुम्हारा मतलब परमिट कैंसिल कर देंगे या बिल्डिंग गिरा देंगे। बिल्डिंग से रोजाना बच्चों की गंदगी के पेपर नहीं गिराएगा गली के अंदर तो कल से बिल्डोजर आकर हम बिल्डिंग गिरा देंगे, ऐसा होता है? नहीं है। कौन गिरा रहा है?
हम गिरा रहे,
हम ही गिरा रहे। गली कौन खराब कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। मतलब ये बताइए कि अपने घर की ड्रेन को जाम करके, ड्रेन के अंदर गंदगियां फेंककर नीचे पड़ोसी को तकलीफ कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं।
आवे का हवा बिगड़ा
तो मतलब ये अच्छा ये हम कहीं भी चले जाएंगे तो ये हरकतें करते हैं हमारे लोग, और वहां जब डंडा चलता है तो सही हो जाता है।
आयता यंग जनरेशन जो है हमारी, ये चाहती है कि हमें वेल व्हाइट कलर जॉब मिले, छोटे मोटे काम करने में इनका दिल नहीं होता कि नहीं यार ये छोटा सा काम में काम, ये बंद कबाब का ठेला लगा ये कर
रहे हैं। आपके साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो पता है क्या क्या बात, कंपनियों ने अपने अंदर इतना ग्लैमराइज कंपनी बनाई खूबसूरत सी और वेल सुटेड नौजवान लिए सूट वूट टाई वायों के साथ और बेपर्दा नौजवान लड़कियां अपॉइंट कर दी, नौजवान इन लड़कियों के पीछे और कुछ वहां के माहौल के वजह पागल होकर छोटी मोटी नौकरी करके वहां पर आज 6-6, 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल गुजार कर अपना प्राइम टाइम जाया करने पर तुल गया है कि लड़की के साथ दोपहर को जाकर कॉफी पी लेता है, शाम को उसके साथ डेट लगा देता है, संडे को उसके साथ थोड़ा सा घूम फिर लेता है, लड़की को भी खर्चा मिल जाता है, उसको भी थोड़ा बहुत इसकी मतलब नफ्स की ख्वाहिशात पूरी हो जाती है, 8-10 साल उसमें गुजर जाते हैं, वो कंपनी उसको इतनी बड़ी सैलरी नहीं देती, छोटी मोटी फैसिलिटीज दे देती है, सिर्फ ग्लैमराइज किया हुआ है। अगर आप मेरी बात को डिनाई कर सकते हो तो करके दिखाओ, इससे अच्छा ये नहीं था कि आप थोड़ा मोटा कारोबार कर लेते, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते, सिर्फ ग्लैमराइज के नाम पर और खूबसूरती के नाम पर और कंपनी का नाम बड़ा होता है, कुछ भी नहीं मिलता बाद में, कान खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है, नाक खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है।
मतलब फाइनेंशियल इंडिया कंपनी को भी नुकसान हो रहा होता है,
हर तरह से खराबियां हो रही होती। क्यों? कि ये सारी चीजें मीडिया पर बाकायदा इसको ब्यूटिफिकेशन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ और मॉडर्निज्म के साथ जो ग्लैमराइज करके ऐसा दिखा दिया जाता है और लोग इसको देखकर समझते रियलिटी है। ड्रामा फिल्म ये चीजें रियलिटी नहीं है, ड्रामा है ही ड्रामाबाजी है, ड्रामा होते ही ड्रामा है, ड्रामा ड्रामे को हमने जिंदगी समझ लिया है, जिंदगी थोड़ी है, वो तो स्क्रिप्टिक चीज है, पता खत्म हो जाएगा। हमको तो यही नहीं पता कि हमारा स्क्रिप्ट है क्या, हमारा लिखा हुआ क्या, कल होना क्या हमारे साथ, हमें यही नहीं पता होता और हम उसको देखकर चलना शुरू कर देते हैं और फिर टकरा जाते हैं किसी दीवार से और कहते दीवार नजर नहीं आई, तो आंखें खोलो दीवार नजर आएगी यार।
एक डेडलाइन तो दे दें कि कब तक मजहबी कल्चर और मजहबी माशरा इस मुल्क को आप देखते हुए मतलब बता सकते हैं?
देखिए हम कोशिश कर सकते हैं,
36 साल पहले मतलब जो है ना जो मकरूज थे इससे ज्यादा हो गए हम, फर्द वाइज ज्यादा मकरूज है 36 साल पहले जो आप 36 साल तक आपने दावत इस्लामी का काम किया। लेकिन
दावत इस्लामी ने ये कब कहा था कि यूं नहीं यूं नहीं यूं हो जाएगा? दावत इस्लामी
खत्म हो
गया, दावत इस्लामी अपना, दावत इस्लामी अपना एक काम लेकर चली, ठीक है, और दावत इस्लामी जिस रोज से बनी है और चली है इसके बानी का कहना यह है कि ये एक कदम पीछे नहीं आई आगे ही बढ़ी। दावत इस्लामी में आप आए कितने अर्से पहले?
6-7 साल के
वालिद साहब से आए थे, ठीक है, आप जावेद की सेकंड जनरेशन है, आप दावत इस्लामी में कब से आए?
वालदा के साथ वो इश्तिमा में जाता था इस्लामी बहनों के।
कितने साल हुए?
4-5 साल का था, ये थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है मुझे।
सेकंड जनरेशन भी? आप कब से आए?
इतना याद है कि वो खारदर में बस में जाते थे गुजारे हबीब वाले इज्तिमा में और फिर फैजान मदीना भी जाते थे।
आज आप 3 बैठे हैं और आपकी तरह मैं लाखों पीछे कुर्सियां लगा दूं, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, इनकी सोचों में जुजवी तौर पर ही सही कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दाऊद इस्लामी लाने में कामयाब हुई है। अच्छा, ऐसे लाखों आपको इस्लामी भाई मिलेंगे जिनका जाहिरी हुलिया मजहबी नजर नहीं आएगा लेकिन इनकी सोचों के अंदर नेकी और बदी का एक तसव्वुर पैदा किया दावत इस्लामी ने, जो गुनाह करकर अब पछताते हैं, गुनाह करकर थोड़ा रोते हैं, गुनाह करके थोड़ा झिझकते हैं, इनको डर लगता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की तमीज पैदा करवाई नहीं करवाई। ये बहुत सारे काम दावत इस्लामी कर चुकी है। इस बेपर्दगी के दौर में कम ही सही, लेकिन बेपर्दा इस्लामी बहनों को बापर्दा किया या नहीं किया दाऊद इस्लामी? दाढ़ी मुंडों को दाढ़ियां रखवाई नहीं रखवाई दाऊद इस्लामी ने? तो ये बताइए कि जो नौजवान तबका आज हाथ में फैजान सुन्नत लेता है, कंजुल ईमान शरीफ कुरान का लेते हैं, मस्जिद में है, नमाजें पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी कि दाव देते हैं, आप ये सोचिए कि अगर इनको ये मदनी माहौल ना मिलता, ये आज कहाँ होते? कई मिलावट करने वालों ने कारोबार छोड़ा, कई गाने बाजों वालों ने कारोबार छोड़ा, कई गुनाह करने वालों ने कारोबार छोड़ा, कई करप्शन वाले ने करप्शन छोड़ा ना, ठीक है, ये कहीं कबूलियत या दावत इस्लाम को कबूल किया जा रहा है ना, बदल तो रहे ना। अब ये प्रॉब्लम ये है अमर भाई कि ये चीज हो तो रही है एक साइड से, लेकिन खराबी जो है ना वो कई साइडों से आ रही है। तो अब हमें मिलजुल कर ये कोशिश करनी है कि इन खराबियों के रास्ते को भी बंद किया जाए, बल्कि जो खराबी लाने हैं इनको भी निकी की दावत देकर इनको अच्छा ही लाने वाला बना दे, हम पॉजिटिव ही की तरफ जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये वो वक्त दूर नहीं होगा कि आपको अच्छी तब्दीली नजर आएगी। 35-36 सालों में जो चेंजेस दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है, इसको मतलब कि दुनिया तहसीन की नजर से देखती है। ऐसे दौर के अंदर ये आसान नहीं था यार कि ये चीजें, मतलब
चंद दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था फैजान मदीना में जिसमें आप तशरीफ आए, अदाकार आए थे, वो महसूस करते कि हम इस मौसम में जब जिंदगी गुजारे वो ठीक नहीं है, आखिर यही मौसम अच्छा है,
माइंडसेट तो बना रहे।
देखो अगर वो
तब्दील
नहीं रख सके, लेकिन उनके ज़हन लग रहा है,
मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आपकी जबान से ये निकलेगा आपका पाकिस्तान आप शुरू से कह रहे हैं, कहा जाते थे कह दे यार मेरा पाकिस्तान,
मेरा पाकिस्तान,
हमारा पाकिस्तान,
मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं रहता हूँ, तो पाकिस्तान तो
मेरे, यकीन मानो मैं, मुझे नहीं पता था कि आप ये सेंटेंस कहेंगे, लेकिन आप यार ये कहकर दिल से कह रहे हो ना का दिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन मतलब उन लोगों को मतलब खराज तहसीन है जिन्होंने सबूल की आजादी में अपना किरदार अदा
किया। आपके राय से हमारे पड़ोसी ममालिक में जो
शिकायत है आपके, आज तो आप बेटी शिकायत की सीट पर है,
एक शिकायत है, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम, यार आप लोग खड़े नहीं होते
किस पर,
रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम आप लोग खड़े नहीं होते,
खड़े होना ना होना ये इशू ही नहीं, मतलब कोई शर्म ना फर्ज है ना वाजिब है,
बैच भी आपने अपने बनाए,
कुछ भी कुछ भी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने पर
ये बैच आप लगाया,
देखो यार इन लोगों ने लगाया, आप में से एक ने भी नहीं लगाया यार, ऐसा नहीं करो, ठीक है, शुरू में आपके जो भी जज्बात थे, हो सकता है कि आप किसी तबके को वो एड्रेस कर रहे हो कि यार ऐसे लोग भी हैं और आपकी कल भी कैफे से हो, लेकिन मेरी तमाम मदनी चैनल के जितने भी आशिकाने रसूल दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करो यार, इस मुल्क के पहाड़ों पर, इस मुल्क के झरनों पर, इस मुल्क की खेती पर, इस मुल्क की आबादी पर, इस सरजमीन को अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से जिन मादनियात से नवाजा है उसको अगर आप देखें तो ये मुल्क अपनी मिसाल आप है, अगरचे हजम वॉल्यूम में ये कोई बहुत बड़ा खित्ता नहीं है दुनिया का, लेकिन इस इतने से खित्ते के अंदर जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इसको नेमतों से नवाजा है अपनी मिसाल आप है, और इतने से खित्ते के अंदर इतने करोड़ों लोग रहते हैं, और इनके अंदर जो मोहब्बतें प्यार और इत्तेफाक का भी जो बाजार है ना वो अपनी मिसाल आप है। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर ना इत्तेफाके नहीं है, नफरतें नहीं है, हैं, लेकिन मोहब्बतों की भी कमी नहीं है, प्यार की भी कमी नहीं है। जब जलजला आता है, सैलाब आता है, कोई नहीं देखता कि सिंध में सैलाब आया है, पंजाब में आया है, या पठानों में आया है, केपीके में आया है, पाकिस्तान चाहे यहाँ रहता हो पाकिस्तानी या दुनिया में कहीं रहता हो, उसके दिल का, उसके जेब का, उसके तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है, उसके अलमारी के दरवाजे खुल जाते हैं, और ये मोहब्बत करता है अपने मुल्क से, अपने मुल्क वालों से, इसको हमदर्दी होती है, तंजीमें आगे आ जाती हैं, खिदमतें करती हैं, जब IDPs आए तो इनकी भी खिदमतें की गई हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, यानी ऐसा नहीं है कि नहीं होता, जब कहीं पाकिस्तानी किसी मुल्क में तकलीफ में आते हैं तो वहां पर दीगर पाकिस्तानी उसकी तकलीफ को बांटने के लिए आ जाते हैं, आप बोलोगे कि तुमको 2-4-10 ऐसे मिल गए होंगे बाकी नहीं मिलते, तो मैं कब कहता हूं कि सबको गमखारी का जज्बा मिला हुआ है, सबको हमदर्दी का जज्बा मिला हुआ है, यहाँ तो बाप बीमार हो, उसके चार बेटे हो तो एक बाप को पूछते हैं, तीन पूछते ही नहीं है, तो ये तो ये एक नेचर बना हुआ है जो मतलब कि हमदर्दी को खा चुका है, हमारी नफसा नफसी हो चुकी है। इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ऐसा। अपने मुल्क से मोहब्बत करें और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने मुल्क के अंदर वो चीजें जो आपको लगता है कि ये गलत हो रही हैं, आप उस गलत से बच रहे हैं।
ये
आप सोचिए, आप उस गलत से बच रहे हैं। अगर आपका बच्चा गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठकर कुछ चॉकलेट खाकर इसका कचरा अगर रोड पर फेंकने की कोशिश कर रहा है, आपने मना किया कि बेटा ये मेरे मुल्क की सड़क है, डस्टबिन नहीं है। आपने कहा अभी से आपने तरबियत की? जब आपकी घर का कोई बच्चा दस्तकान उठाकर गैलरी के अंदर झाड़ने के लिए आया तो आपने उसको कहा कि बेटा ये मेरे मुल्क की सड़क है, ये मेरे ये डस्टबिन नहीं है बेटा, डस्टबिन घर के अंदर रखा है, कचरा घर के अंदर फेंको। आपने किया? आपने अपने घर की एक बत्ती बंद की ये कहकर कि बेटा ये ज्यादा लाइट जल रही है, बंद करो ताकि मेरे मुल्क की मैं एनर्जी को बचा सकूं, और जिसके घर में बिजली नहीं है उसके घर को हो सकता है कि मेरे चार में से एक बल्ब बंद हो जाएगा, और जिसके घर में एक भी बल्ब नहीं है वो जलना शुरू हो जाएगा। क्या आपने ये तरबियत की? आपने घर का पानी इस्तेमाल करने में कहा कि बेटा ये पार्क के अंदर जो इतना सारा पानी है, गाड़ी धोने में इतना सारा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, इसको ज्यादा इसको इसराफ मत करो, फजूल खर्च मत करो, ताकि जिसके घर में पानी नहीं उसके घर में पानी आ जाएगा। क्या आपने ये सोचा? तो हम कहते हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर मतलब वसाइल हैं, इसको हासिल करने की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। आप दुनिया भर के सिस्टम पर, पाकिस्तान के बहुत सारे सिस्टम के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, मगर आप और मैंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की, इसकी खूबसूरती और बेहतरी के लिए अपना जाति क्या किरदार अदा किया कि ये कहकर हम भी चले गए जब जब कोई करता नहीं है तो तुम क्यों करते हो? आज भी अगर कोई सड़क पर थूकता है तो मुझे तकलीफ होती है कि मेरे मुल्क की जमीन है ये, तुम्हारे घर का डस्टबिन नहीं है जिसको तुम थूकते हो, तकलीफ होती है, मेरा मुल्क है।
सबसे पहले मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छाई को गेन करेंगे, अच्छाई के लिए आगे बढ़ेंगे तो और भी आपके साथ मिलते चले जाएंगे। तो अच्छाई की तरफ
हम कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम कहते हैं जनाब ये इस्लामी ये चीज नहीं, इस्लामी ये चीज, इस्लामी ये चीज नहीं है। मैं आपको पूछता हूँ, आपके इलाके में मस्जिद है उसकी अजान की आवाज आ रही है? दुनिया के कई मुल्कों में अजान की आवाज नहीं आती। हम दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं, कई मजहबों की कई ऐसी आवाजें सुनते हैं, हमको अजान की आवाज नहीं आ रही होती। आज आप जिस मुल्क में वहां आपको घर बैठे अजान की आवाज आ रही है। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक फर्द हैं, एक एक पाकिस्तानी है, एक मुसलमान है, पाकिस्तान आजाद और इस्लाम के नाम पर। आज आपके महल्ले की मस्जिद के अंदर अजान हुई है, आप इस्लाम और दीन की बात तो कर रहे हो, आप घर से निकल के मस्जिद में आकर आपने नमाज पढ़ी?
हाँ, ये
नहीं पढ़ते आप नमाज नहीं पढ़ते, इसमें इस मुल्क का क्या कसूर है? आप बताइए, आप नाजायज बिल्डिंगें बनाते हो और वहां पर दीगर काम करते हो, इसमें इस मुल्क का क्या कसूर है? यहां आप नाजायज तरीके से इंपोर्ट करते हो, नाजायज तरीके से एक्सपोर्ट करते हो, इस मुल्क का क्या कसूर है? आप कहेंगे रिश्वत का लेन देन है, तो वो भी तो मतलब कि हमारी बनाई हुई चीजें हैं ना सारी, इसी निजाम से निकला एक फर्द है जो सीट पर जाकर बैठ गया है। अगर वो नमाजी होता, परहेजगार होता, खौफ खुदा वाला होता तो वो नहीं लेता, और ऐसा होता भी है। अगर कहीं 200-250 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें भी 20-25 ऐसे होते हैं जो नहीं लेते, सबके सब रहने वाले नहीं होते। तो मेहरबानी करें, अपने वतन से मोहब्बत करें और हुब्बुल वतनी का एक अमली सबूत दें, और अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने घर वालों की तरबियत करें, और अपने इलाके की मस्जिद को आबाद करें, जबकि कोई मानए शरई नहीं है, कोई शरई रुकावट नहीं है, गुनाहों से बचें। इस मुल्क को अगर आप अच्छा देखना चाहिए, पाकिस्तान है मेरा मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, इसको गुनाहों की दलदल से कौन रोकेगा? अगर हम कहें कि हजारों लोग करप्टेड हैं तो क्या हम करप्शन में मुबतला नहीं है? अगर कोई ले रहा है तो हम दे रहे हैं, कोई बुराई कर रहा है तो हम बुराई करवा रहे हैं। क्या फिल्में ड्रामे देखना सिनेमा घर के हवाले से क्या ये सब बुराइयां नहीं है? कोई नहीं बोलता इसके खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ सब बोलते हैं, कोई बोलता है कि हमारे यहाँ सिनेमा क्यों बुला हुआ है? क्योंकि फिल्म देखना सिनेमा को कोई बुराई नहीं समझ रहा, हराम है, बल्कि उन लोगों के लिए वही दें जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले, तो कुरान में वही दें उसके लिए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे अजीज پاکستانی عاشقان رسول اپنے وطن سے محبت کریں اور دنیا میں جہاں بھی رہیں ایسے پاکستانی بن کر رہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ ایسا مسلمان اور مسلمان کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہے کہ الحمدللہ اس کے کردار سے ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کا پرابلم کریٹ نہیں ہوتا.
نہیں دیش خود ہی آزاد
ہے. ایسا کچھ کام کریں. ایک ملک میں ایک مسلمان پاکستانی تھا, وہ اس کا پڑوسی جو تھا نا وہ غیر مسلم تھا, پڑوسی کہیں چلا گیا چھٹی پر یا کسی اور جگہ پر چند دنوں کے لیے. جب وہ واپس آیا تو وہ ایک مسلمان پاکستانی, اس نے جا کے اسے گھر کی گھنٹی بجائی تو اسے دروازہ کھولا تو دیکھا تو اس کا وہ پڑوسی تھا, کیا ہاؤ آر یو, وہ انگریز تھا. تو اس نے ایک بنڈل نکالا اس کو دیا تو اسے واٹ از دس, بولا یہ جو نیوز پیپر ہیں تم تو چلے گئے تھے, وہ نیوز پیپر والا روزانہ نیوز پیپر تمہارے گھر کے دروازے پہ باہر ڈال کے چلا جاتا تھا, اب یہ اس سے پہلے آیا تھا میں اٹھا کر رکھ لیتا تھا کہ تم آؤ گے تو میں تم کو دے دوں گا. تو اس نے کہا صرف تم اس کے لیے گھر سے نکلتے تھے, یہ لیتے تھے رکھتے تھے یہ سب کرتے تھے. بولا ہاں, اس کا کردار دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے.
ایسا بھی ایک واقعہ سناؤں آپ کو, میں بھی باہر ملک میں گیا تھا, وہاں کچھ پریشانی آئی, ٹکٹ نہیں ہو گیا, یہ ہو گیا, بہت پریشانی. ایک دوست مل گیا, اس نے ایک غیر مسلم سے ملایا, ان کی دکان تھی گارمنٹس کی. میں روزانہ اس نے بولا بس یہاں آ جاؤں, ان کی دکان میں بیٹھتا تھا روزانہ, حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ میری ویزا وہاں ختم ہونے میں دو دن رہے. اس بندے نے بولا کہ ٹھیک ہے میں تو ٹکٹ کا انتظام کرتا ہوں. اس نے ٹکٹ کا میرا انتظام کیا, کپڑے دیے, میں وہ ٹکٹ لیا اور ایئرپورٹ پہنچ گیا. ایئرپورٹ پہنچ گیا واپس آ گیا کہ وہ ٹکٹ جو ہے اس میں ریزرویشن ہوئی بھی نہیں تھی. واپس آ گیا سیٹ کی ریزرویشن, دوسرے دن پھر گیا میں ریزرویشن کروا کے گیا میں واپس, وہاں پہنچا جہاں مجھے جانا تھا. وہاں سے جب واپس آیا اور اس کو پیسے میں نے وہاں سے بھجوا دیے تھے اس ٹکٹ کے, تو وہ کہنے لگا کہ یار محمد شفیع اگر تمہارے جیسے دو چار بندے اور ہو جائیں نا تو پاکستان کا نام روشن ہو جائے, لیکن میرے یہاں کئی پاکستانی جو پیسے کھا کے چلے گئے. تو ہم کوشش کریں اچھا بننے کی, اپنے آپ کو اچھا بنائیں, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, تو کیوں نہ ہمارا ملک جو ہے وہ گلشن بن جائے, ایک بہترین ملک بن جائے جس کی مثالیں دنیا میں دی جائیں.
صحیح بات. آئیے کلام سنتے ہیں ان
شاء اللہ.
اول تاخیر خاموش بیٹھا ہے پاکستان میں, صحابی تو کچھ کہو پاکستان سے محبت کے حوالے سے. یہ بھی بول دیا, چلو ٹھیک ہے.
صلی اللہ تعالی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت کر, اس پہ صدا سایہ رحمت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما, لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, فضل سے اب مجھے جنت بھی عطا فرما, فضل کر اس پہ سجا سایہ
تے فرما شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما.
دیکھیں ہمارے بھائی یہ شعر پر دیکھیں شکر ادا کر رہے ہیں امیر سنت کے ہمیں غلامی سے آزادی ملی یہ شکر کا پہلو ہے لیکن ساتھ دوسرا مصرع کیا ہے ہمیں ہماری کھوئی ہوئی شوکت بھی مولا عطا فرما دے ہمیں آزادی ملی ہے لیکن ابھی ہماری کھوئی ہوئی شوکت ہمیں نہیں ملی وہ وقار وہ مقام وہ جو مرتبہ جو ایک مسلمان کا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں ملا اس کی جستجو میں رہنا ہے نہ کہ آزادی کو تنقید کی نظر سے دیکھنا ہے یہ شکر تو ہے
چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرمانا فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبہ اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما آمین.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے اور اس میں جو بدعنوانیاں ہیں کرپشن ہے رشوت ہے سود ہے گناہوں کی یلغار ہے بے پردگی ہے بے حیائی ہے اور مسجدوں کی طرف نہ جانا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں یقیناً یہ نوٹیسیبل ہیں اور بے روزگاری بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے پریشانیاں بھی ہیں قرضے بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور بہتری عطا فرمائے اور اس کے بہتری میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سب مل کر صرف یہی کرتے رہیں گے کہ خرابی ہے خرابی ہے خرابی ہے تو کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اندھیرے کو مت کوسو اپنا چراغ درست کر لو. تو جب ہم اپنا چراغ درست کریں گے یعنی اندھیرے کو کوسنے سے فائدہ نہیں ہے بڑھ کر روشنی جلا لو لائٹ جلاؤ گے تو بجلی آ جائے گی جب بجلی آ جائے گی بتی جلے گی لائٹ جلے گی اندھیرا دور ہو جائے گا مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. ہم سب مل کر کوشش کریں صرف تنقید سے اور نگیٹو سے اور منفی سوچ سے ملک ترقی نہیں کرے گا ملک مثبت سوچ سے ترقی کرے گا. خرابی کس کے گھر میں نہیں ہوتی کمزوری کس کے گھر میں نہیں ہوتی لیکن کمزوری اور خرابی کے باوجود کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے حالات درست کرتا ہے. جو پاکستان کے باہر جاتے ہیں اور جا کر وہ جس قدر محنت و مشقت سے اپنے روزگار کو پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی جتنے کرتے ہیں باقی تو بے روزگاری اور قرضے اتنے کہ بیچارے خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حرام موت سے بچا کر رکھے. اتنی بھی نہ اگر اس کی کوئی پرسنٹیج بھی اگر یہاں پر ہمارے نوجوان کوششیں کریں نا اور محنت کی طرف دھیان دیں اور ایمانداری کی طرف دھیان دیں. باہر جاتے تو ایک منٹ لیٹ نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے کہ ایک تھوڑی سے لیٹ ہو جائیں گے تو کٹوتی ہو جائے گی اور یہاں پر یہ جس طرح کی بدعنوانیوں کے ساتھ جابس کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ جب اس طرح کی کوالٹی جو باہر آپ نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کی گرفت پکڑ ہے لیکن مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کے دل میں تو خوف خدا ہونا چاہیے اور آپ دنیا کے کسی ملک میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہی ایمانداری دیانتداری کا جذبہ ہمارے ملک کے اندر اگر ہم سب استعمال کریں اور بددیانتی سے خود کو بچائیں تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کر سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جب ملک میں رہنے والے لوگ ہی ایماندار دیانتدار نمازی پرہیزگار ہوں گے تو یہی تو طبقہ آگے آ کر نظام ہی چلاتا ہے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا. آپ آگے کی نظر رکھیں اور بہتری کی طرف بڑھیں ایک قدم بہتری کی طرف آگے بڑھائیں. اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک دنیا میں ایک رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر دیں. اللہ ہم سب کو وطن عزیز سے محبت عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیکی و پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ.